आइए अब हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के महान सृष्टिकर्ता, जो यीशु को मरे हुओं में से फिर से वापस ले आया और हमारे साथ इन 2000 वर्षों से जीवित है, अपने वचन की पुष्टि करने के लिए सदा जीवित है और हर पीढ़ी के लिए इसे सच्चा ठहराता है। इस समय हम उसकी उपस्थिति के लिए बहुत ही धन्यवादित हैं, यह जानते हुए कि हमारे पास यह एक महान आश्वासन है कि इस जीवन के पूरा हो जाने के पश्चात हमारे पास इस आने वाले जगत में अनंत जीवन है। प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। और वो आशा प्राणों के लिए लंगर, जो कि तूफान के समय में स्थिर और निश्चित बना रहता है, और जब तूफान आता है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसमें विश्वास करने के द्वारा हम महसूस करते हैं कि हम हर लहर को चीर सकते हैं। आज रात परमेश्वर हमारी सहायता करे, जब हम बीमारों की सेवकाई के लिए आते हैं और आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब आज रात हम यहाँ से जाते हैं तो एक भी रोगी व्यक्ति हमारे मध्य में ना हो। होने दे कि आपकी दिव्य सामर्थ्य से प्रत्येक व्यक्ति चंगा हो, यहाँ और सारे राष्ट्र में जो प्रसारण के द्वारा सुन रहे हैं। होने पाए कि एक भी निर्बल व्यक्ति किसी भी भवन या किसी भी झुंड में से आज रात बाहर न जाए। आपका आत्मा उन्हें चंगाई दे। धर्म का महान सूर्य अपने पंखों में चंगाई के साथ ऊपर उठे और विश्वास की किरणें प्रत्येक के हृदय में पहुंच जाए, जब वे इस वचन को सुनते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को देखे, उन्हें भरोसा दिलाते हुए कि वो अब भी जीवित है। हम इन आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आज रात यहाँ होने के लिए इसे एक बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं, फिर से ताकि लोगों से बोलें और बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो इस राष्ट्र से बाहर उस टेलीफोन के जरिए से फिर से आज रात जुड़े हुए हैं, सारे राष्ट्र भर में। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीषित करेगा। भरोसा करते हैं कि वे सब जिन्होंने मसीह को इस सुबह स्वीकार किया है, वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और जब तक यहाँ धरती पर का जीवन समाप्त न हो जाए, हमेशा ही विश्वास योग्य और उसके प्रति सच्चे रहेंगे इस मरणहार जीवन में। और तब वे ऐसा करने के द्वारा उनके पास अनंत जीवन होगा। वे इस आने वाले युग में कभी नहीं मरेंगे, उस महान युग में जिसके लिए हम आगे देख रहे हैं। अब हम यह कहने जा रहे हैं, जबकि मैं इस पर सोच रहा हूँ और न ही रुकावट डालने के लिए, भाई बेल यहाँ पर है और संभव है मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मैं यह लेख आपके लिए भेज सकता हूँ? जब मैं टूसान वापस जाऊँगा, मैं इसे देख रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं पड़ा है, और जैसे ही मैं टूसान वापस जाऊँगा, मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा। अब मैं एक घोषणा को करना चाहता हूँ, यह विशेषकर हर जगह की कलीसियाओं के लिए, विशेषकर पश्चिम में या कहीं भी जो आना चाहते हैं। हमारे अच्छे भाई भाई पेरी ग्रीन, जो साथ यहाँ, ये वो व्यक्ति है जो इस टेलीफोन प्रसारण के जुड़ने से प्रोत्साहित करता है। प्रभु ने उसके हृदय में ये डाला है कि वो यहाँ टूसान में आकर हमसे भेंट करे और टूसान में बेदारी को आरंभ करे, जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। और भाई पेरी टूसान में होंगे। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे वहाँ के ऑफिस से संबंध स्थापित करें। यह अगस्त में 10, 11, 12 और 13 तारीख को होगी। उसके हृदय पर यह बहुत समय से था और मैंने उसे बताया कि वहाँ केवल एक ही तरीका है कि अपने हृदय के इस बोझ को उतारे कि जाकर इसे करे। और वह एक मसीही भाई है, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक। और आप जो लोग टूसान में हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग आशीषित होंगे। जब वो वहीं पर कहीं तो सेवकाई के काम को करता है, शायद रमदाइन या जहाँ कहीं भी प्रभु स्थान को प्रदान करता है, उसे यहाँ पर स्थान नहीं मिला। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप आकर भाई ग्रीन को सुनेंगे तो आशीषित होंगे, जब वो परमेश्वर के वचन को समझाते हैं, शायद बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं या जो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक के कर्तव्य में रखा है। हम भाई ऑर्मन नेविल, भाई मान का भी उनके साथ इस अद्भुत समय की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं किस तरह से बहुत ही आभार को प्रकट करता हूँ कि मैं भाई नेविल, भाई मान जैसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ आसपास के सारे सेवक लोगों से मैं समझता हूँ उन्हें पहचान लिया गया है। यदि आपने हमारे बोर्ड और हमारी कलीसिया को नहीं पहचाना है, तो मुझे पक्का है कि परमेश्वर आपको अपने सेवकों के समान पहचानता है। होने पाए कि प्रभु आपको सदा आशीष दे। अब मुझसे यहाँ कुछ पूछा गया था, एक छोटी सी टिप्पणी को मुझे दिया गया था, ताकि एक रात उन लोगों की यहाँ ट्रस्टी की बैठक हुई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और डीकन की, और मैं सोचता हूँ कि बैठक का विवरण आज सुबह कलीसिया के सामने पढ़ा गया, जो कि ये करना हमारे लिए रिवाज है। वे निर्णय जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और डीकनों के द्वारा यहाँ कलीसिया में लिए गए हैं, निश्चय ही यह हर एक को खुश नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते, मेरा ट्रस्टी बोर्ड से कोई मतलब नहीं है या डीकन बोर्ड से। मैं उसमें वोट भी नहीं देता हूँ जब तक वहाँ बराबरी ना हो, और तो फिर ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ होना है। भाई ऑर्मन नेवल दूसरा वोट लेते हैं, तब हमें इस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, क्योंकि हम कलीसिया के भाग हैं। इसलिए ट्रस्टी बोर्ड और उनके बोर्ड के निर्णय जो वे लेते हैं, हम निश्चित रूप से उनके समर्थन में 100% खड़े होते हैं, क्योंकि वे इसीलिए यहाँ पर हैं और उनके निर्णय उनके और परमेश्वर के बीच में हैं। मेरा किसी भी प्रकार से उनसे निर्णय के विपरीत मतभेद नहीं हो सकता, न ही होगा। और दूसरी बात, संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा मुझे किसी भी निर्णय को लेने की मनाही है इस संबंध में, इसलिए उनके निर्णय का सुधार करने के लिए मुझसे ना कहें। मैं इसे नहीं कर सकता और मैं इस विषय में कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझे। इसलिए उनके निर्णय का सुधार करने के लिए मुझसे ना कहें, आप बोर्ड से ही मिले जो निर्णय को लेता है, तो ठीक है। अब आने वाली बैठक में यह संभव है, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं यहाँ 4 से 6 सप्ताहों में वापस आऊँगा, या ऐसा ही कुछ हो सकता है दूसरे रविवार की सभा के लिए। और इस सुबह मैंने घोषणा की है कि मैं परमेश्वर अपने ही वचन में प्रकट हुआ इस विषय पर बोलूंगा, और अब आज रात मेरे पास समय नहीं होगा, और खुले रूप से मेरे पास इसे करने के लिए पर्याप्त आवाज नहीं है। और फिर भीड़, वहाँ जितने लोग बाहर हैं उतने ही लोग अंदर हैं, और हो सकता है अधिक होंगे। उन बसों और ट्रकों और इत्यादि को गिनते हुए जो बाहर खड़े हुए हैं, जिसमें लोग हैं, उस छोटे से प्रसारण को चालू किया है, थोड़ा सा आगे करके हम इसे सुन सकते हैं। यह छोटा सा प्रसारण आराधनालय से छोटी सी तरंग, हम इसे शहर के खंड की दूरी से पकड़ सकते हैं। और कुछ कारें बहुत सी शहर के खंड की दूरी से, कारों की कतारें ऊपर और नीचे और हर कहीं और सड़कों में आज रात आराधनालय के आसपास हैं। मैं नहीं सोचता कि कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आज रात कलीसिया के भीतर और बाहर पहले से कहीं ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए हम लोग और बहुत से लोग बस गाड़ी से आ रहे हैं और लौटकर जा रहे हैं। इसलिए ये दर्शाता है जहां लोथ है उकाब जमा होंगे। और मैं आपसे आज रात्रि इस लोगों के छोटे झुंड में कह सकता हूँ, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सभा है। व्यावहारिक रूप में संयुक्त राज्यों के 2/3 का यहाँ प्रतिनिधित्व है। 5 विदेशी देशों को छोड़, यहाँ तक कि रूस और देश के सारे विभिन्न भाग को छोड़, वहाँ दूर वेनेजुएला में, वहाँ जमैका में, राष्ट्र के सारे विभिन्न भाग से लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्या ही शानदार समय है। अब मैं चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ने से पहले क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो मैं इस विषय पर एक छोटा सा संदेश लाने का प्रयास करूँगा, दिव्य चंगाई को अपने खुद के लिए उपयोग करना, क्योंकि इस सुबह हमने उद्धार के विषय में बातें की, और आज रात हम दिव्य चंगाई के ऊपर कुछ मिनटों के लिए बोलने जा रहे हैं, और तब प्रार्थना पंक्ति को बुलाएंगे और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जबकि हम रेडियो प्रसारण के द्वारा यह कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, यहां तक कि बाहर बसों और कारों में, आसपास और आराधनालय से 1 या 2 खंड के भीतर, जब बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय आता है, यदि आप भवन के भीतर नहीं आ सकते हैं, जैसा कि आप नहीं आ सकते, अब मुझे पक्का है, क्योंकि दरवाजों के रास्ते भीड़ से भरे हुए हैं पहले से ही, और कहीं भी कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप प्रार्थना करें और एक दूसरे पर अपने हाथों को रखें। और प्रत्येक सेवक जो आज रात इस प्रसारण से जुड़ा हुआ है, अपनी सभा के लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। जब चंगाई सभा चल रही हो, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर कहीं पर सर्वव्यापी है। अब इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले पढ़े जाने वाले अपने वचनों को बदल दिया, क्योंकि मैं उस सभा के तरीके को बदलना चाह रहा था जो कि मैंने अपने विचार में आज रात के लिए तय किया था। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया है, और इसलिए मुझे अपने वचनों का लेख बदलना पड़ा, न ही उन्हें बदला लेकिन उसे दूसरे क्रम में व्यवस्थित किया है, दिव्य चंगाई के क्रम में, ताकि जिससे कि लोग समझ जाएं। आइए हम संत लूका का 24वां अध्याय निकालें और हम 24वें अध्याय के 12वें पद से आरंभ करेंगे और लगभग 34वें तक पढ़ेंगे। यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर है। तब पतरस उठकर और कब्र की ओर दौड़ गया और झुककर और उसने केवल सन्न के वस्त्र देखे, अपने आप में अचंभा कर रहा था उस बात पर जो हुआ था। और देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलम से कोई 60 मील की दूरी पर था। अब ये 10 फरलांग का एक मील होता है, इसलिए ये लगभग 6 मील था। और जब वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, ऐसा हुआ कि जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु स्वयं पास आकर और उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। और उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और वे उदास से खड़े रह गए। और ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने उससे उत्तर में कहा, क्या तू यरूशलम में अकेला परदेसी है और जो तू नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या बातें घटित हुई हैं? और उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? और याद रखें, ये यीशु स्वयं जी उठकर उनसे बातें कर रहा है। और उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें भरोसा था कि वही है जो कि इज़राइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के अलावा इस घटना को हुए आज तीसरा दिन था। हाँ, और हम में से कुछ स्त्रियों ने भी हमें अचंभे में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उन्होंने उसकी लोथ न पाई तो वे आई यह कहते हुए कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। और उनमें से कुछ जो हमारे साथ थे कब्र की ओर गए और इसे यहाँ तक वैसा ही पाया जैसा कि स्त्रियों ने कहा था, परंतु उसको ना देखा। अब सुनना यीशु, तब उसने उनसे कहा, हे निबुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सारी बातों पर विश्वास करने में मत मंदियों, क्या इन चीजों का होना अवश्य न था कि मसीह इस दुख को उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की सारी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने उसे यह कहकर रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और अब दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रुकने के लिए भीतर गया, और ऐसा हुआ जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर इसे आशीषित किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आँखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। और उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? और जब वो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। और जब वे उनके साथ थे, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग में की गई बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने किस तरह से उसे रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन सच्चा है, आपका वचन जीवन है, और आप हे प्रभु और आपका वचन एक है। इसलिए प्रभु हम आज रात्रि प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आएंगे और आज रात्रि हमें दिखाएंगे उनके समान जो इमाउस से आए थे कि हम भी यही कहते हुए अपने घरों को वापस जाएं, कहते हुए क्या हमारे भीतर हृदय में उत्तेजना ना हुई। प्रभु इसे प्रदान करें। यह अब फिर से सांझ की ओर है, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं इस बाइबल के विषय में बोलना चाहता हूँ, और मेरा आज रात का विषय है इसके शीर्षक के लिए, जो है घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट की गई। घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट की गई। अब बाइबल सारी दूसरी पवित्र किताबों से भिन्न किताब है। बाइबल एक भिन्न किताब है। यह एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, आने वाली घटनाओं को बताती है, और यह प्रभु यीशु का प्रकाशन भी है। यह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उसे उसकी परिपूर्णता में लाती है, वो क्या था और क्या है, और सारी पूर्ण किताब प्रकाशित वाक्य एक से तीन में कहा यह किताब यीशु मसीह के प्रकाशन की एक किताब है, जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन। अब बाकी सारी किताबें, पवित्र किताबें, ये केवल एक नीति शास्त्र की नियमावली है, आचरण की नियमावली या धर्म ज्ञान की नियमावली, कुछ ऐसा ही। कितनों ने कुरान को कभी पढ़ा है, मुसलमानों की बाइबल और बौद्ध लोगों की किताब और इत्यादि को। यह बस नीति शास्त्र की नियमावली है कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं करती, इन बातों के विषय में कुछ नहीं कहती, या किसी विशेष दानों के लिए जो किसी को दिया गया हो कि कुछ तो चीज को घटित होना है, ठीक जैसे किसी लॉट से जुड़ना या ऐसा ही कुछ। इसलिए जब कलीसियाएं उस स्थान में आती हैं कि वह अपनी कलीसिया को लॉस से जुड़ने का स्थान बनाते हैं, तब वे परमेश्वर से अलग से दूर भटक जाते हैं, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह की जीवित पहले से बताई गई गवाही है। और जैसे कि धरती अपनी भरपूरी में बढ़ चुकी है और दाखलता भी अपनी परिपूर्णता में बढ़ गई है, दिन भी अपनी परिपूर्णता में बढ़ रहे हैं, बाइबल यीशु मसीह के व्यक्तित्व में अपनी परिपूर्णता में प्रकट हुई। वो परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन था, छुटकारे की संपूर्ण पूरी किताब। बाइबल परमेश्वर का वचन है, आने वाली बातों को पहले से बताता है, इसके विश्वास करने वाले लेखक के द्वारा आज्ञा को पाते हैं कि इसे पढ़ें और इसके प्रत्येक वचन का विश्वास करें, ना कि इसके बस कुछ भाग का। यदि इसके एक वचन पर भी अविश्वास करते हैं, तो आप इसका प्रयास करना छोड़ दें, जब तक आप उस वचन पर विश्वास नहीं कर लेते। प्रत्येक वचन पूरी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर प्रकट बना, उसके वचन में का घाव यह दिखाता है कि वो कौन है। विश्वासी के रूप में हमें आज्ञा मिली है कि इसके प्रत्येक वचन का विश्वास करें, और इसे स्वयं परमेश्वर के लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं मिला सकता या इसमें से कुछ नहीं निकाल सकता है। यदि आप करेंगे तो यह परमेश्वर की एक विचित्र सी देह होगी। यह ऐसे होगा मानो जैसे एक हाथ में छह उंगलियां या तीन हाथ हों, या कुछ तो ऐसे ही कुछ तो मिला देना या इसमें से कुछ निकाल देना, और एक हाथ कम हो, एक उंगली कम हो। यह यीशु मसीह की संपूर्ण देह है, और मसीह में नर होने के नाते दूल्हा दुल्हन भी उसी में प्रतिनिधित्व करती है, और ये दोनों एक हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। क्या ही एक संपूर्ण तस्वीर है। और इस वचन में सच्चे विश्वासी जो इसे इसी तरह स्वीकार करते हैं, इसका विश्वास करते हैं और धैर्य के साथ इसकी की गई भविष्यवाणी की प्रतिज्ञाओं के लिए रुके रहते हैं, उनमें से प्रत्येक अपने युग में प्रकट होंगी। हर एक विश्वासी ने इसके लिए दृष्टि को लगाया है। हर एक विश्वासी जो पैर की उंगलियों पर तैयार रहता है, इसके लिए देख रहा है, यही वो एक है जिस पर प्रकट किया जाता है। अब प्रभु यीशु के आगमन के दिनों की ओर देखें। क्यों उन लोगों ने यूहन्ना को नहीं पहचाना, जबकि बाइबल यशाया के द्वारा स्पष्ट बताता है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो। उनका अंतिम भविष्यवक्ता जो उनके पास था, जो कि मलाकी 3 है, कहा, देखो मैं अपना दूत अपने आगे मार्ग तैयार करने के लिए भेजता हूँ। उन्होंने इसे क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे किसी और चीज के लिए देख रहे थे जो किया गया था। अपने विचारों को किसी संदेश पर आधारित कर रहे थे जो इससे पहले आया था, और परमेश्वर के वर्तमान प्रकटीकरण को देखने में असफल रहे जिस दिन में वे रह रहे थे। और मसीही हर कहीं, ठीक यहीं पर जहां आज रात संसार खड़ा है, बिना विरोध के यही सच्चाई है। हर जगह मसीह लोग किसी नीति शास्त्र के नियमावली को मुड़कर देखने का यत्न कर रहे हैं, जिसे श्रीमान लूथर ने लिखा या श्रीमान वेस्ली, सैंकी, फिन्नी, नॉक्स, कैल्विन, जिसके लिए हम में से कोई भी बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन यह बीते दिनों में था। मूसा ने जो कहा, फरीसियों ने उसी बात को मुड़कर देखा और उन्होंने कहा, हमारे पास मूसा है, हम नहीं जानते कि तू कहाँ से आया। लेकिन याद रखें, जब मूसा यहाँ पर था, उन्होंने नहीं जाना कि वो कहाँ से आया है, समझे? और अब वे, कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने उनसे कहा, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें सजाते हो और तुम ही वो एक हो जिन्होंने उन्हें वहाँ पर डाला। उनके संदेश के चले जाने के पश्चात एक संदेश चला जाता है, लोग इसे देखते हैं, वे इसका उपहास उड़ाते हैं, संसार ऐसा करता है। और तब संदेश वाहक के चले जाने के पश्चात और संदेश पूरा होने के पश्चात, तब वे इस संदेश पर संप्रदाय बनाते हैं और वहाँ वे मर जाते हैं, ठीक वहीं पर, और फिर से जीवन तक कभी नहीं आते। कुछ क्षण के लिए कुछ लोगों की ओर देखें, और विशेषकर मैं आप कैथोलिक लोगों से बोल रहा हूँ। क्या आपको एहसास है, क्या आपने कभी उस असली इतिहास में पढ़ा है, रोमन कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में, किस प्रकार आपकी शहीदों की पुस्तक में संत ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो के बाद से लेकर कितने लाख भोले लोगों को उस कलीसिया ने मौत के घाट उतार डाला? मैं भूल गया, मुझे सही गिनती याद नहीं है, लेकिन ये लाखों में है। जब से संत ऑगस्टाइन हिप्पो का अफ्रीका इस घोषणा को किया कि यह पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा है कि जो कोई भी रोमन कैथोलिक कलीसिया का विरोध करता है, उसे मार डालो। क्या आपने इसमें अनुभव किया कि संत पैट्रिक को तब तक नहीं पहचाना गया जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई एक रोमन कैथोलिक के रूप में? उसने पोप का विरोध किया और उसके सारे कार्यकलापों का, और कैथोलिक कलीसिया स्वयं ने उसके दसियों हजार बच्चों को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया ने जोआन ऑफ आर्क को जलाया, उस छोटी संत महिला को खूंटे से बांधकर, क्योंकि कहा कि वो एक जादूगरनी थी? 200 साल के बाद उस याजकों के उन शरीरों को खोद कर निकाला जब उन्हें मालूम पड़ा कि वे गलत थे, और उन्हें समुन्द्र में फेंक दिया बिना उन्हें पवित्र भूमि में दफनाए ताकि प्रायश्चित करें। उस दिन को अपने सिर के ऊपर से न जाने दें और मूर्ख न बने। किस तरह से वे याजक आज रात चाहेंगे कि आगे आए जिन्होंने यीशु को दोषी ठहराया? केवल एक चीज, उन्होंने कभी भी उस समय की भविष्यवाणी को नहीं देखा। यदि वे, यीशु ने कहा, वचनों में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें, या मेरा मतलब दावा करते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और वचन तुम्हें बताता है कि मैं कौन हूँ, उस घड़ी के लिए ध्यान दें, बाइबल असफल नहीं हो सकती। यही एक चीज है जो यह नहीं कर सकती कि परमेश्वर का वचन असफल हो जाए, क्योंकि यह अपने लेखक के कार्य को उसके इसे करने से पहले बताती है। अब हजारों में से एक मौका होता है कि एक मनुष्य भविष्यवाणी को कर सकता है कि कुछ तो और घटित होने जा रहा है, और यह घटित होता है। लेकिन यदि वह यह भी बताता है वो स्थान कहाँ पर होगा, तो उसके लिए संभावना घट जाती है। हो सकता है 10,000 में एक हो। यदि वह दिन बताता है कि यह उस दिन पर होगा, तो संभावना और कम हो जाती है, लगभग 10,00,000 में से एक। और ऐसा किसके साथ होने जा रहा है, तो उसकी संभावना करोड़ों में से एक रह जाती है। लेकिन यह बाइबल आपको बिल्कुल ठीक ठीक बताती है कि कौन कब कहां और किस बात के लिए देखें और कभी एक बार भी असफल नहीं हुआ है। इसलिए ज्यादा समय नहीं हुआ एक छोटी सी वार्तालाप में जो यहां सेक्रेट हार्ट के एक याजक के साथ हुई। उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम आप बाइबल पर एक वाद विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, यह तो कलीसिया का एक इतिहास है। मैंने कहा, यह इतिहास नहीं है, यह परमेश्वर है स्वयं एक छपे हुए रूप में। उसने कहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा, परमेश्वर अपने वचन में है और इसके विपरीत जो कुछ भी है वह झूठ है, क्योंकि उसने कहा मेरा वचन सच्चा और हर एक मनुष्य का शब्द झूठा ठहरे। उसने कहा, हम तर्क वितर्क के लिए नहीं हैं। मैंने कहा, मैंने आपसे तर्क वितर्क के लिए नहीं कहा, लेकिन बाइबल कहती है आओ हम तर्क करें। इससे पहले कि वह इसे करे, यह लेखक के कार्यों को पहले से बताता है। इसलिए इसे बताते हुए यह प्रत्येक पुरुष और महिला को बिना किसी बहाने के न्याय के कटघरे में खड़ी करती है। यदि आप उस बात को लेंगे जो उसके विषय में मेथोडिस्ट बताते हैं, बैप्टिस्ट इसके विषय में जो बताते हैं, कैथोलिक क्या कहते हैं, पेंटिकॉस्टल इसके विषय में जो कहते हैं, या कोई और कलीसिया, तो हो सकता है आपको न्याय पर कुछ निराशा मिले। लेकिन यदि आप केवल ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है, ये घटित होने जा रहा है, और जब यह घटित होता है तब आप पहचान जाएंगे कि क्या होता है। अब यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं है कि सारे लोग इसे देख सकें, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि इसे ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपाया और इसे उन बालकों पर प्रकट करता है जो उसे सीखेंगे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए सोचें जो उसके अपने वचन में बैठा हुआ है सामर्थ के साथ कि धनी और ढीठ और पढ़े लिखे विद्वानों को अंधा कर दे, उनकी आंखों को अंधा करता है ताकि वे उसे ना देख सकें, और निर्धनों और अनपढ़ की आंखों को खोलता है। इन इमाउस के लोगों पर ध्यान दें। उसने कहा उनकी समझ उसके अपने विषय में रुकी हुई थी। उन्होंने उससे बात की और यहाँ तक नहीं जान पाए कि पूरे दिन उनके साथ कौन था। परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। बिल्कुल ठीक यही उसने उन याजकों शास्त्रियों के साथ किया, क्योंकि ऐसा लिखा था कि उसे ऐसा करना था। परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि हमारे पास एक अवसर हो। ध्यान दें, वे नहीं देख सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ज्ञानी थे, वे कितने याजक थे, उन्होंने क्या किया, वे फिर भी इसे नहीं देख सकते क्योंकि वे अंधे थे। शारीरिक रूप से उनकी दृष्टि 20-20 या स्वस्थ हो सकती थी, लेकिन उनकी आत्मिक दृष्टि। ठीक यही चीज आज सुबह में व्यभिचारी स्त्रियों के विषय में कहने का यत्न कर रहा था। जिस प्रकार से वे अब कपड़े पहन रही हैं, वे व्यभिचारिणी हैं। परमेश्वर की पुस्तक में वे व्यभिचार करने के दोषी हैं। जब भी वे कामुक दिखने वाले वस्त्र पहनती हैं, उनके प्राण इसे नहीं जानते। मैं विश्वास करता हूँ वे स्त्रियाँ, उनमें से बहुत सी, उनमें से हजारों निर्दोष हैं और किसी भी तरह से व्यभिचार नहीं करना चाहती। और वे बेचारी स्त्रियाँ, जब उनके साथ कोई ऐसा होता है जो उन्हें खुलकर नहीं बताता और सच्चाई को नहीं बताता, तब वे व्यभिचार कर बैठती हैं। जो बाइबल ने कहा, वो वैश्या जो बहुत से पानी ऊपर बैठी है कि धरती के सारे राजाओं और धरती के लोग कलीसियाएं और इत्यादि ने इस स्त्री के साथ आत्मिक व्यभिचार किया, और वो वैश्याओं की माँ थी। वे संप्रदाय, हम बाइबल को ध्यान से देखते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं छोड़ता। उसने बाइबल को पहले से हमें यह बताने के लिए भेजा, इससे पहले कि घटनाएं घटित हों, और उसी स्वभाव और उस समय से वे आएंगे। अब यह कुछ इस प्रकार से है कि कैलेंडर में देखते हैं यह कौन सी तारीख है। यदि आप सोचते हैं, कहते हैं कि यह ये दिन है, यह शनिवार रविवार है या कौन सा दिन है, तो कैलेंडर की ओर देखिए। कैलेंडर आपको बताएगा कि यह कौन सा दिन है। जब आप लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हैं, हो सकता है वे कलीसिया जाते हों, आप देखते हैं उन घंटियों को बजते सुनते हैं, आप सोचते हैं कि आज कौन सा दिन है। आप कैलेंडर को देखें, ये आपको बताएगा कि यह कौन सा दिन है। और जब आप कलीसिया को सांसारिक होता देखते हैं, जैसा कि यह सदोम के दिनों में था, देखते हैं कि सांसारिक कलीसिया सब उसी में जा रहे हैं, इस आराधना में जो इस दुष्ट युग का ईश्वर है, और इसे देखते हैं, तब छोटे से अल्पसंख्यक झुंड को परमेश्वर की प्रेरणा के नीचे एकत्र होते हुए देखते हैं, जो फिर से यीशु मसीह के जीवन को वचनों के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे घटित होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप कौन सी घड़ी में रह रहे हैं। यह बाइबल भविष्यवाणी के द्वारा पहले से बताती है कि हम किस दिन में जी रहे हैं और किस समय में हम जी रहे हैं और किस प्रकार की घटनाओं को जगह लेना चाहिए। यह शब्द दर शब्द सही सही पहले से बताती है और कभी भी एक युग को भी नहीं चूकी, एक बार भी इसे नहीं चूकी और ना ही चूकेगी, क्योंकि वे जो इसे देखने के लिए पहले से ठहराए गए हैं वे इसे देखेंगे। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे ना खींच ले, और वे सब जिनको पिता ने मुझे दिया मेरे पास आएंगे। यह वचन है जो वचन के साथ जुड़ता है, यह और कुछ नहीं कर सकता। हम इसे जानते हैं वो दिन जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन जैसा कि यह हर युग में होता आया है कि लोग मनुष्य को उनका अपना अनुवाद वचन में डालने देते हैं और जिसकी वजह से होने वाली घटनाओं के प्रति उन्हें अंधा बना देते हैं। फरीसियों और सदूकियों के साथ भी ठीक यही बात हुई थी। यहाँ तक कि जब पौलुस वहाँ पर खड़ा हुआ और वचन का हवाला देने की कोशिश की और एक मनुष्य ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा क्योंकि उसने महायाजक को एक चुना लिपी हुई सफेद दीवार कहा, और तब वे परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी के वचन की पुष्टि करते हुए देखने से चूक गए। देखो, बाइबल स्वयं का विरोध नहीं करती है, बाइबल परमेश्वर है। वहाँ परमेश्वर में कोई विरोध नहीं है, वो सिद्ध है। लेकिन लोग उनके अपने अनुवाद के साथ होते हैं। अब ध्यान दें मित्रों, मैं आपको दिखाऊंगा, कलीसियाएं इसके अनुवाद को लेकर स्वयं आपस में सहमत नहीं हो पाते हैं। मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के साथ सहमत नहीं हो सकते, बैप्टिस्ट पेस्बिटेरियन के साथ, पेस्बिटेरियन पेंटिकॉस्टल के साथ, और पेंटिकॉस्ट की लगभग भिन्न भिन्न 40 संस्थाएं, वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए, यह उलझन में डालते हुए फिर से बाबुल होगा। लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है, उसने इस बात की प्रतिज्ञा की है और फिर उसे स्वयं पूरा करता है। वो स्वयं ही इसका अनुवाद करता है क्योंकि वह स्वयं को उस घड़ी में प्रकट करता है। मसीह की वो देह कितनी आगे बढ़ गई है, पैरों से सिर तक। ध्यान दें, तब यही वो कारण है कि यह लोग इसे समझने से चूक जाते हैं, क्योंकि वे इस बात को सुनते हैं कि इसके विषय में कोई और क्या कहता है, बजाय इसके कि वचन को पढ़ें जैसा कि यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा। और वे वही हैं जो मेरी गवाही को देते हैं, वचनों में ढूंढो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वे वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। दूसरे शब्दों में सुनिए, क्या वचनों में पढ़ें और देखें कि मसीहा को क्या करना चाहिए था, देखें कि मसीहा को किस समय में आना चाहिए था। देखो, मसीहा के आगे आगे कौन आने वाला है। उस घड़ी की ओर देखो, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हो रही है, यूहन्ना, और तुमने जो चाहा उसके साथ ठीक वही किया। देखो, मुझे क्या करना चाहिए था जब मैं आया, और अब तुमने क्या किया है। क्या मैं इसे पूरा करने में असफल रहा? देखो, यीशु बोल रहा है, क्या मैं इसे पूरा करने में असफल रहा? ध्यान दें, जैसे कि दोपहर को हम इस वचनों में से होते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक चीज जो उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी बिल्कुल ठीक वैसे ही घटित हुई जैसे होना चाहिए था। उन्हें इस घटना को जानना चाहिए था। यह कट्टरपंथी लगभग 33 वर्षीय जवान व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है और या 30 वर्ष का, और वहाँ पर जाकर और सभी प्रकार के उजियालों का और उन पिंडुकियों के ऊपर की ओर जाने का दावा कर रहा है। और क्यों? यह बस एक अपमानजनक बात है। उन्होंने कहा कि उसका जन्म अवैध माता पिता से हुआ और दावा किया गया कि वो एक कुंवारी से जन्मा था। क्या उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि यशाया ने यशाया 9:6 में कहा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ? क्या उन्हें यह भी पता नहीं होना चाहिए कि यशाया भविष्यवक्ता ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी? उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए, ये बातें ऐसी थी वे इसे कहीं तो आगे लागू कर रहे थे, और उनके लिए यह मनुष्य उनके निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं था। लेकिन उसने उनसे पूछा, वचन में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वे वही बातें हैं जो मेरे संदेश की गवाही देते हैं। ना कि किसी धर्मज्ञानी ने क्या कहा, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा उसका अपना वचन कहा कि क्या बात जगह लेगी। आमीन। ऐसा ही यह अब है, वचनों में ढूंढो, क्योंकि वे ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम कौन से घड़ी में जी रहे हैं। ये हमें ठीक ठीक बताता है कि आज के दिन क्या घटित होगा। यही वे वचन हैं जिन पर आपको निर्भर होना चाहिए, क्योंकि यही वो एक है जो उस व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही देते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, क्योंकि वो इस युग में वचन का प्रकाशन है, भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के अनुवाद को सुनने के द्वारा वे परमेश्वर के वचन को पूरा होने की पुष्टि होते हुए देखते हैं, वे इसे देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि ऐसा हर समय होता आता है, लेकिन क्योंकि वे सुनते हैं। और यीशु ने कहा कि वे अंधे अगुए हैं, और यदि अंधा अंधे का मार्गदर्शन करे तो उनका क्या होगा। अब याद रखें कि बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि इस लौदिकियन युग की कलीसिया संबंधी पीढ़ी अंधी है। उन्होंने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया, ना ही किसी दूसरे युग में, दूसरी कलीसिया युग में कि जहाँ पर यीशु बाहर था, लेकिन लौदिकिया कलीसियाई युग वह बाहर की ओर था, अंदर आने का यत्न कर रहा था। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, उसे अंदर होना चाहिए, लेकिन उसने कहा, क्योंकि तुम कहते हो मैं धनी हूँ, चीजों की भरपूरी है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और वे नहीं जानते कि तुम अंधे हो, अंधे की अगुवाई कर रहे हो, आत्मा में दरिद्र, दुखी, अभागे, नंगे, और इसे नहीं जानते। क्या ही यदि कोई मनुष्य सड़क पर नंगा हो, अभागा, अंधा, और जानता हो कि उसके पास इतनी समझ है कि आप उसे बता सकें कि वो नंगा है, वो इस विषय में कुछ तो करने की कोशिश करे, लेकिन जब वह अपना सिर हिलाता है, कहता है, मैं इसे नहीं करूँगा, तुम कौन हो कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब यदि यह दयनीय अवस्था नहीं है तो मैं नहीं जानता क्या है। और बिल्कुल ठीक यही है जो इस बाइबल के परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया ऐसी होगी इस दुष्ट युग में, जो ठीक अब है, अंतिम कलीसियाई युग जहाँ हम रह रहे हैं। ध्यान दें, लेकिन लोगों के लिए जितनों से मैं प्रेम करता हूँ मैं ताड़ना करता हूँ। अब जो आप कर रहे हैं उसके लिए उसी प्रभु से आपकी ताड़ना हुई है, तो फिर इससे बाहर आ जाओ, इससे अलग हो जाएं। जितनों से मैं प्रेम करता हूँ ताड़ना करता हूँ। अब परमेश्वर को देखते हुए अब क्या हो यदि वे फरीसी यह कहें, एक मिनट रुकना, उस व्यक्ति ने हमें चुनौती दी है, उसने कहा है तुम वचन में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें तुम्हारे पास अनंत जीवन है, वे मेरी गवाही देते हैं, यह अच्छा होगा कि वचनों में देखकर और ढूंढ लूं कि उसे क्या करना चाहिए, यह कौन है, क्या बात जगह लेना चाहिए, मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए, बजाय इसके कि याजकों के पास जाकर और उनसे पूछूं इस विषय में क्या है। भिन्नता को देखा, उन्हें उस वचन को पढ़ना चाहिए था। इब्रानियों 1:1 में बाइबल ने कहा, परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समय में, यही है पुराने बीते समय में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से बाइबल लिखवाई। अब ध्यान दें, अपने खुद के चुने हुए तरीके से उसने बाइबल को लिखा, समझे। अब उसे इसे इस प्रकार से नहीं लिखना था, ना ही मनुष्य को लहू के द्वारा बचाना था, उसे मनुष्य के द्वारा सुसमाचार प्रचार नहीं करना था। वह सूर्य या चंद्रमा या सितारों को सुसमाचार प्रचार करने दे सकता है, वह हवाओं को सुसमाचार को देने दे सकता था, लेकिन उसने मनुष्य को चुना और उसने मार्ग को चुना, उसका वचन आया, और यह उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा था जो कि पहले से ठहराए गए और अभिषिक्त थे परमेश्वर के वचन के भाग होने के कारण, उस युग और उस समय में उसके वचन के प्रकाशन की घोषणा को कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल भविष्यवक्ताओं के पास आता है, ये कभी भी धर्म ज्ञानियों के पास नहीं आया, मुझे वचन में से दिखाएं, यह केवल भविष्यवक्ताओं के पास ही आता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए परमेश्वर ने अपनी बाइबल को अपनी चुनी हुई विधि के द्वारा लिखा और अपने खुद के चुने हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ना ही वे भविष्यवक्ता जो मनुष्य ने चुने, लेकिन उन भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने चुना था। तब ये विश्वासी लोग जो उनके भविष्यवक्ता ने कहा उसे पूरा होने पर ध्यान देते हैं, और यही इस बात की पहचान है कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि पहले उन्होंने प्रेरणा पाई, फिर वे ठीक उस घड़ी के वचन के साथ बने रहे, तब यही उसका प्रमाण पत्र है। देखो, हमने पिछले रविवार इन्हीं बातों को देखा, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हमने उदाहरण दिया कि कैसे वे बालाम और मूसा दोनों एक ही आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हैं। उनमें से एक ने कहा, हम सब एक हैं, आओ हम जुड़ जाएं, हमारी लड़कियों और सभी को एक साथ ले आएं, यहाँ हमारे पास सुंदर लड़कियाँ हैं और तुम लड़कों यहाँ आओ और अपने लिए अच्छी पत्नी चुन लो। यह ठीक है, हम सब एक ही लोग हैं, जो भी हो एक ही जाति है। परमेश्वर ने उन्हें इसके लिए कभी भी क्षमा नहीं किया क्योंकि उन्होंने इस बात को सुना। देखो, संसार और वे लोग किसी छोटे से मार्ग के लिए देख रहे हैं, कुछ छोटे से रास्ते से हटकर, कोई छोटा आसान रास्ता, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई छोटा आसान रास्ता नहीं है। वहाँ एक नमूना है, आपको उस नमूने में फिट होने के लिए खुद को काटना ही होगा, ना कि उस नमूने को काटने की कोशिश करें जो आपको फिट बैठे। प्रत्येक को अवश्य ही यही करना है। परमेश्वर के पास इसे करने का केवल यही तरीका है। अब ध्यान दें, विश्वासी लोग वचन की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन प्रभु परमेश्वर के द्वारा, इसलिए यह मनुष्य की किताब नहीं है। किसी ने कहा कि यह तो बस पुराने इब्रानी लेख हैं। क्या इब्रानी लोग अपने आप को दोषी ठहराने के लिए पत्र लिखेंगे? क्या वो यहूदियों का अच्छा राष्ट्र, जो स्वयं से घोषित और सभ्य कहते हैं, क्या वे अपने अपराधों को लिखेंगे? वे स्वयं को दोषी ठहराएंगे? निश्चय ही नहीं। अपने ही पापों को बताएं कि कैसे मूर्ति पूजा में चले गए, कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध व्यभिचार किया। नहीं नहीं, वे कभी नहीं बताएंगे। वो अभिमानी राष्ट्र, यह एक मनुष्य की किताब नहीं है, यह परमेश्वर की किताब है। और मनुष्य जो दर्शन को देखता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है, बहुत सी बार इसे अपने आप से कभी नहीं समझ पाता। बहुत से मामलों में देखा, मनुष्य ने बाइबल को नहीं लिखा, परमेश्वर ने बाइबल को लिखा। यह ऐसा नहीं है, यह एक मनुष्य की किताब नहीं है, यह तो परमेश्वर की किताब है। यह परमेश्वर के विचार मनुष्य के होठों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। यही है जो इसे बाइबल बनाता है। एक विचार का प्रकट होना एक शब्द है, और आरंभ में परमेश्वर के विचार में उसने इसे अपने भविष्यवक्ता के होठों के जरिए से व्यक्त किया और अपने दास के द्वारा इसकी पुष्टि की। समझे, ध्यान दें, परमेश्वर पहले से ठहराए जाने के द्वारा अपना खुद का चुनाव करता है। हर युग के लिए भविष्यवक्ताओं को चुनता है। इस पर ध्यान दें, वह भविष्यवक्ता के स्वभाव को उस युग के अनुकूल बनाता है। देखो, वह उसके शैली के अनुकूल बनाता है। जो कुछ भी वह करता है, वह उसे उस परिस्थिति के अनुकूल बनाता है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। जिस ढंग से वह प्रचार करेगा, जो दान उसे प्राप्त होंगे, उसे उसके अनुकूल बनाता है। और उस ठहराए हुए युग का संदेश, परमेश्वर निश्चित बातों को घटित होने के लिए पहले से ठहराता है, और कोई दूसरी बात इसका स्थान नहीं ले सकती, चाहे वो कुछ भी हो, कितनी मनुष्य निर्मित उपलब्धियाँ हो, इसका स्थान कोई नहीं ले सकता। वह मनुष्य को पहले से ठहराता है। हो सकता है एक अनपढ़ मनुष्य हो सकता है उसने उसे किसी दूसरे प्रकार का एक मनुष्य ठहराया हो। वह जो भी है, वो उसे उसकी श्रेणी देता है, उसके दान उसे उसका स्वभाव देता है, उसकी शैली, और ये जो कुछ भी है, वह किस तरह से स्वयं को व्यक्त करता है, और जो कुछ भी वह करता है, वह उस समय के मनुष्य को बनाता है ताकि उस समय के लोगों को पकड़े। सही है, वह इसे करता है। प्रत्येक युग के अंत में जब कलीसिया संसार और पाप की ओर मुड़ जाती है और मनुष्य के द्वारा वचन के अनुवाद पर निर्भर रहती है, हमेशा की तरह वे युग के अंत में हमेशा ही करते हैं। वे अपने धर्म ज्ञानियों और याजकों के द्वारा इतनी गड़बड़ी में चले जाते हैं, यहाँ तक यह हमेशा के लिए गड़बड़ हो जाती है। उनके अनुवाद हमेशा ही गलत होते हैं, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वे गलत ना हुए हों, और एक बार भी परमेश्वर का वचन सही होने में असफल नहीं हुआ। यही भिन्नता है। अब आप देखिए, परमेश्वर ने बाइबल को स्वयं लिखा। अब परमेश्वर बोल सकता है। मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने उससे बात की, यर्मिया ने कहा उसने मेरे मुंह में वचनों को डाला, और परमेश्वर लिख सकता है। उसने 10 आज्ञाएं अपनी खुद की उंगली से लिखी, उसने बाबुल की दीवारों पर लिखा। और याद रखें, केवल पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं ने 2000 बार कहा, यहोवा यो कहता है। परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर लिख सकता है, निश्चय ही मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना लगभग 90%, ये वही स्वयं परमेश्वर के वचन है जो यीशु मसीह बोल रहा था। इसलिए यदि परमेश्वर लिख सकता है, यदि परमेश्वर पढ़ सकता है, यदि परमेश्वर बात कर सकता है, क्या वह ये सब दूसरों से वैसा ही नहीं करवा सकता है? क्या उसने मूसा से नहीं कहा किसने मनुष्य को गूंगा बनाया या किसने उसे बोलने की शक्ति दी? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाइबल को लिखा, यही उसके करने की विधि है। अब हर बार जब कलीसिया गड़बड़ में पड़ जाती है और परमेश्वर उन्हें पहले से जानता है कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि वो सारी बातों को पहले से जानता है, इसलिए उसके पास उसके ठहराए हुए भविष्यवक्ता उस युग के लिए तैयार थे, ताकि उसके चुने हुओं को उसके चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के प्रमाणित वचन के द्वारा बुलाए और उसके वचन की पुष्टि के लिए उसके पीछे आते हुए चिन्हों के साथ वचन की पुष्टि करता है, जैसे उसने प्रतिज्ञा की है। वो स्वयं भविष्यवक्ता के प्रमाणित होने के बाद सही अनुवाद को देता है। लेकिन वे सब चुने हुए जिनके पास उसे भेजा गया, उन्होंने उससे घृणा की। अब हर घटना की जांच करें और देखें क्या यह सही है कि नहीं। केवल वे ही लोग जिनके पास उसे भेजा गया, वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। ध्यान दें, वचन की हर एक जांच, हर घटना में और युग के अंत या चरम अवस्था या जंक्शन पर, जैसा कि मैंने बहुत सी बार इस पर प्रचार किया है, नूह के युग की ओर देखें, न्याय से पहले चरम अवस्था में क्या घटित हुआ, क्या हुआ? नूह, यह केवल उसका अपना ही परिवार था जिसने उस व्यक्ति पर विश्वास किया, बाकी लोगों ने उसकी आलोचना की और समस्त संसार नाश हो गया। अब्राहम के दिनों में केवल अब्राहम के झुंड ने विश्वास किया। जब दूतों ने जाकर सदोम में प्रचार किया तो केवल लूत और उसकी पत्नी और दो पुत्रियां बाहर आए और वो पीछे मुड़ी और नमक का खंभा बन गई। मूसा के दिनों में केवल चुने हुए इसराइली बाहर आए और फिरौन ने उससे घृणा की। एलिया के दिनों में हर एक चीज लगभग केवल 7,000 मनुष्यों को छोड़ प्रत्येक ने उससे घृणा की, समस्त राष्ट्र ने। यर्मिया के दिनों में क्यों? उन्होंने उस पर कच्चे फल फेंके और उसे कट्टरपंथी कहा, क्योंकि वह एक करवट बहुत दिनों तक लेटा रहा और दूसरी ओर भी और चीजों को लेकर और चिन्ह बनाए, उन्होंने उससे घृणा की। यशायाह भविष्यवक्ता ने उसने उस जाति को इतना दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उन्होंने उसको आरे से काट कर दो टुकड़े कर दिया। सही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो वहाँ एक जंगली मनुष्य था, कोई चिल्लाने वाला पागल। वे सारे, लेकिन उन चेलों को उसने यीशु मसीह के सामने एक कलीसिया के रूप में पेश किया, यही है ये। यूहन्ना ने लोगों को तैयार किया, उसके पास कितने थे? आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, दोनों हाथ की आपकी उंगलियों पर। जब यीशु आया तो यूहन्ना ने उसके सामने कितने लोगों को प्रस्तुत किया? अब उसके दूसरे आगमन के विषय में क्या है, इस पर सोचें। लेकिन जब सच्चे बाइबल के विश्वासी वचन को खुले रूप में उस युग के लिए प्रमाणित होते देखते हैं, तो वे विश्वास करते हैं। उन्हें इससे अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि वे विश्वास न करें, यहाँ तक कि वे अपनी गवाही को अपने लहू से मुहर बंद करते हैं। वे इसे विश्वास करते हैं, यह तब यह उन पहले से ठहराए हुए लोगों के लिए होता है जो उस निश्चित युग के लिए हैं, जो इसे देखते और विश्वास करते हैं। दूसरे लोग बस इसे नहीं देख सकते हैं, वे अंधे हैं। अब आप कहते हैं वे इसे नहीं देख सकते, अब जैसे कि बालाम क्यों इसे नहीं देख सका? वह एक भविष्यवक्ता था, अभिषिक्त था, क्यों फिरौन इसे नहीं देख सका? जबकि उसने परमेश्वर के हाथ को नीचे आते देखा और वहाँ आश्चर्य कर्म करते हुए देखा, इसने केवल उसके हृदय को कठोर कर दिया। क्या यह सही है? दातान स्वयं यहूदी होकर क्यों नहीं इसे देख सका? वह ठीक वहाँ मृत्यु सागर में से होते हुए निकल कर आया था और हर एक रात को उसने मन्ना खाया जो कि ताजा गिरता था, और फिर भी इसे ना देख सका। क्यों कोरह इसे ना देख सका? क्यों केफा इसे ना देख सका? वह उस समय पर संसार का धर्म प्रधान व्यक्ति था, क्यों नहीं वह देख सका कि वो मसीहा था? यहूदा क्यों इसे ना देख सका? यहूदा ठीक उनके साथ था, उनके साथ साथ चल रहा था, उनके साथ आश्चर्य कर्म को कर रहा था, लेकिन वचन को पूरा होना ही था। बाइबल कहती है कि वे अपना स्थान लेने के लिए पले बड़े थे, वे इसी उद्देश्य के लिए पले बड़े थे। यह सत्य है, रोमियो 8 यह कहता है। अब विश्वासी लोग देख सकते हैं कि वचन उनकी पीढ़ी में देहधारी हुआ, परमेश्वर बोल रहा है। अब वे सच्चे विश्वासी लोग, वे 7,000 या वे 700 थे, एलिया के दिनों में 7,000 सही है। एलिया के दिनों में लगभग 20 या 30 लाख में से 7,000 मनुष्य थे जिन्होंने देखा कि वो सही था, यहाँ तक मुश्किल से लोगों का सवा भाग भी नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सही था। उन्होंने परमेश्वर को प्रकट होते देखा। वह बूढ़ी विधवा जिसके पास एलिशा को भेजा गया था, वह उन लकड़ियों को लेने गई ताकि एक रोटी को बनाए, और उसके बेटे के लिए एक रोटी बनाने के लिए बस पर्याप्त था, और फिर मर जाते। लेकिन एलिया को देखिए, उसने कहा पहले मेरे लिए एक रोटी बना, क्योंकि यहोवा यो कहता है, कुप्पी खाली न होगी और न ही तेल खत्म होगा उस दिन तक जब तक प्रभु परमेश्वर धरती पर वर्षा नहीं भेजता है। कोई प्रश्न नहीं, उसने रोटी को बनाने के लिए तुरंत ही उठाया और इसे उसे दे दिया, कहा पहले मेरे लिए बना और उसके बाद जाकर अपने लिए और अपने पुत्र के लिए बना, क्योंकि उसने उस मनुष्य को सुना और उसकी ओर देखा, वह पहले से ठहराई हुई बीज थी। उनमें से बहुत से कहते हैं, देखो वहाँ वह फिर से बूढ़ा सनकी है, उसके कारण परमेश्वर ने हमें शापित किया है। याद रखें, एलिया कहा तू ही है जो इज़राइल को परेशानी में डाल रहा है। उसने कहा तू ही वो एक है जिसने इज़राइल को परेशानी में डाला है। देखिए जिसे परमेश्वर वह किसके वचन को प्रमाणित कर रहा है, अपने ही वचन को। अब बाइबल कहती है वे इसी उद्देश्य के लिए पले बड़े थे, लेकिन जब वे अविश्वासी लोग, लेकिन अब जब सच्चा विश्वासी उस युग में वचन को देहधारी होते देख सकता है, परमेश्वर मनुष्य के मुंह के जरिए से बोलता है और फिर वो ठीक वही करता है जो उसने कहा कि वो करेगा, इससे बात खत्म हो जाती है। अब इसके बाकी लोगों पर ध्यान देना, चिन्हों को ना देखें। यदि आप चिन्हों को देखेंगे तो आप संसार के समान निश्चित मूर्ख बन जाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भरमाएंगे। वचन पर दृष्टि रखें, इन याजकों, इन भविष्यवक्ताओं और इब्रानी भविष्यवक्ता की ओर देखें जो वहाँ खड़े हुए हैं, सिद्ध किया दो बड़े सिंहों के साथ, और कह रहा है मैं परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त भविष्यवक्ता हूँ। यह सत्य है, मेरे पास यहाँ मेरे साथ 399 लोग हैं और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है जो पुष्टि कर रहा है और कह रहा है कि वह देश हमारा है, आओ हम आगे बढ़कर और उसे ले लें। और इन सिंहों के द्वारा आहाब, तू अपने शत्रु को हमारी जमीन पर से बाहर धकेल देगा, क्योंकि यह जमीन परमेश्वर ने हमें दी है। उस धर्मी मनुष्य, भले मनुष्य यहोशापात की ओर देखें, कहा क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है, एक और 400 सहमति में है। उसने कहा हाँ, यहाँ पास में ही एक और है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा वो हमेशा हम लोगों पर जोर से चिल्लाता है और हमें बताता है कि हम कितने बड़े पापी हैं और बहुत कुछ कहता है। कहा मैं उससे घृणा करता हूँ, वो मिकाया है, इमला का पुत्र। उसने कहा ओह राजा को ऐसा कहने मत दो, जाकर उसे ले आओ और हम सुनेंगे कि वह क्या कहता है। इसलिए वे जाकर उसे ले आए। उसने कहा मुझे आज की रात देना और मैं देखूंगा कि प्रभु इस विषय में क्या कहता है। आहाब ने कहा मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि मुझे सत्य को छोड़ और कुछ न बता। और उस मनुष्य ने आकर कहा अब यदि तुम अच्छी संगति में आना चाहते हो तो जैसा बाकी सब कहते हैं वही कहो। मिकाया ने कहा मैं वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है, समझे। अगली सुबह वे बाहर आए और वे राजा अपने वस्त्र धारण करके फाटक पर बैठ गए। सारे प्रतिष्ठा पाए लोग, भविष्यवक्ता वहाँ पर खड़ा हुआ था, कहा अब कट्टरपंथी, अब तुम इस विषय में क्या कहते हो। कहा जाकर चढ़ाई करो। कहा परंतु मैंने इज़राइल को ऐसे तितर बितर देखा जिसका कोई चरवाहा ना हो। उसने उसका हाथ पकड़कर और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ता को मुंह में थप्पड़ मारा। अब उन भविष्यवक्ताओं ने वहाँ खड़े होकर भविष्यवाणी की, वे 400 उस एक के विरुद्ध, यह काफी मजबूत सा दिखाई दिया। अब भीड़ के परामर्श में हमेशा सुरक्षा नहीं होती, इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ पर, वे किस विषय में परामर्श कर रहे हैं, उनकी सलाह क्या है। वहाँ राजा के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, और उसने सही होने के लिए भीड़ की सलाह ली। लेकिन यदि वह थोड़ा सा रुककर और मुड़कर लिपटी हुई पुस्तक को देखता कि एलिया ने हाल ही में क्या कहा, तब मिकायाह कुछ नहीं कर सका। वह नहीं जानता था, जबकि हो सकता है कि परमेश्वर ने इसके लिए उसे क्षमा कर दिया हो, लेकिन पहले एक भविष्यवक्ता होने पर वह परमेश्वर के पास गया ताकि पता करे कि परमेश्वर ने क्या कहा है, और उसने पता लगाया कि परमेश्वर ने क्या कहा है। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, और उसने कहा, स्वर्ग के सारे सलाहकार उसके आसपास जमा हुए, कहा, हम में से कौन नीचे जाकर और आहाब को यहाँ लाने का कारण बना सकता है, जिससे हम उस भविष्यवाणी को पूरा कर सकते हैं जो उसके विषय में की गई है। भविष्यवाणी को देखिए, एलिया पहले ही बोल चुका था, कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे, और इसलिए उसने कहा, उसने एक झूठी आत्मा को नीचे की ओर से ऊपर आते देखा, ऊपर आकर उसके सामने आई, कहा, मैं नीचे जाऊंगी और उसके भविष्यवक्ताओं के भीतर समा जाऊंगी, आहाब के भविष्यवक्ताओं में, और उनसे झूठ की भविष्यवाणी करवाऊंगी। अब परमेश्वर जानता था कि वे मनुष्य बहुत ही फूल गए हैं और धर्म ज्ञान से इतने भर गए हैं कि उन्होंने सोचा उनके पास सारी चीजें सही हैं। उन्होंने उस घड़ी के संदेश पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम सफल हो जाओगी, नीचे जाओ। और जब मिकायाह ने कहा कि इसने उस दुष्ट आत्मा की अधीनता में उन्हें भविष्यवाणी करने को लगाया, उन्होंने टेलीफोन का तार खींच कर निकाल दिया या रेडियो को बंद कर दिया या कुछ भी किया होगा, जब उन्होंने सुना कि यह उनके विरोध में आ रहा है, उठकर और बाहर चले गए। लेकिन देखिए क्या घटित हुआ, अब मिकायाह को अपना दर्शन लिखित वचन के साथ जांचना था, इसलिए वो जानता था। उसने कहा, जब मैं आता हूँ इस व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसे दुख का पानी और दुख की रोटी दो, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं उसे देख लूँगा। उसने कहा, यदि तुम किसी भी हालत में वापस आ गए तो समझो परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। यही है जब वो जानता था कि उसका दर्शन ठीक उस घड़ी के वचन के अनुसार है, यह आहाब का समय है। भाइयों बहनों, यह बाबुल से बाहर बुलाए जाने की घड़ी और समय है। सांझ के उजाले यहाँ पर हैं, जबकि ये उजाला है तो उजाले में चलो। ध्यान दें, विश्वासियों ने वचन को प्रकट होते देखा और इसका विश्वास किया। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है, मेरे वचन को, इस युग के मेरे चिन्हों को, वे एक झूठे के पीछे नहीं जाएंगे। अब आइए हम अपने विषय को लें, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं दूर हट रहा हूं। मैं उस प्रार्थना पंक्ति पर अधिक जोर देना चाहता हूं। आइए हम अपने विषय पर वापस चलें, जिसे हमने विचार के लिए लिया है। अब यहां एक मिनट। अच्छा, यह फिर से होगा जैसा कि यह हमेशा से होता रहा है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यूहन्ना को भेजा, जैसा कि उसके वचन ने कहा था, मलाकी 3 में प्रतिज्ञा की थी, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ कि मार्ग को तैयार करे। यूहन्ना ने उसी चीज की गवाही दी। और हम यशाया 40:3 में भी यही पाते हैं, जो यशाया ने कहा, वहाँ भविष्यवक्ता की एक आवाज होगी, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। समझे, वे सारी भविष्यवाणियां, और देखो जल्दी से ध्यान देना, वचन ने उसकी पहचान दी। जब उन्होंने कहा कि तू कौन है, क्या तू मसीहा है, उसने कहा, मैं नहीं हूँ, क्या तू यर्मिया है, भविष्यवक्ता या उनमें से एक, उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जंगल में पुकारने वाली एक आवाज हूँ, जैसा कि भविष्यवक्ता यशाया ने कहा। आप सोचते हैं कि वे इसका विश्वास करेंगे? नहीं श्रीमान, क्यों? क्योंकि वह उनकी कलीसिया में से होते हुए नहीं आया, वह उनमें का नहीं था। देखिए, वह 9 वर्ष की आयु में जंगल को चला गया था और 30 वर्ष का होकर बाहर आया। उसका संदेश बहुत महान था कि वह धर्म विद्यालय में से होकर नहीं आ सकता था। वही वो एक था जिसे उस मसीहा का परिचय करवाना था, और हर कोई उसे इस ओर और उस ओर खींच रहा था, और उसके पिता जकर्याह की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने उसे जंगल में भेज दिया, और वो एक याजक था, लेकिन उसने अपने पिता की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, क्योंकि भविष्यवक्ता इस प्रकार की चीजों में से निकलकर नहीं आते। वे कठिनाइयों के देश जंगल में से निकलकर आते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं, या वे दृश्य पर कैसे उठते हैं, या उनका कोई भी इतिहास। वे बस सामने आकर और वचन का प्रचार करते हैं, और परमेश्वर उन्हें ले लेता है और वे दूर चले जाते हैं, उस पीढ़ी को दोषी ठहराते हैं और उसके वचन में आगे बढ़ते जाते हैं और उस महान दिन की प्रतीक्षा करते हैं। कलीसिया ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वे लोग उसके विषय में नहीं जानते थे। उनके पास उसके नियुक्त किए जाने का उनकी पुस्तकों में कोई लेख नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। देखिए, उन्होंने परमेश्वर के प्रमाणित वचन का विश्वास नहीं किया जो शब्द दर शब्द स्पष्ट था। समझे, मलाकी 3:2 वचन उससे प्रमाणित करते हैं। मलाकी 3 और यशाया 40:3, देखो उन दोनों वचनों ने एक मनुष्य के आने के विषय में बोला जो प्रभु के मार्ग को तैयार कर रहा था। उसने इसके हर विशिष्ट विवरण को पूरा किया। उसे एक भविष्यवक्ता होना था। मैं तुम्हारे पास एलिशा को भेजूंगा और वहाँ पर वो था। हर प्रकार की कठोरता में ध्यान दें, उसका स्वभाव किस प्रकार से एलिया से मिलता जुलता था। एलिया जंगल में रहने वाला एक मनुष्य था, ऐसा ही यूहन्ना था, बाहर ही रहा। वह एक कोमल मनुष्य नहीं था, वो एक सख्त स्वभाव का मनुष्य था। फिर से ध्यान देना, एलिया स्त्रियों से घृणा करने वाला था। उसने इजाबेल को उसके श्रृंगार आदि के विषय में बताया और बताया कि कहाँ सही है और कहाँ गलत। ऐसे ही यूहन्ना था। इजाबेल ने एलिया को मारने की कोशिश की। उसने अपने देवताओं की शपथ खाई कि वह उसके सिर को अलग कर देगी। ऐसा ही हेरोदिया ने किया। देखा, हमेशा ही उनके संदेश पर ध्यान दें कि उन्होंने क्या किया। अब हम पाते हैं कि यदि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा होता कि बाइबल ने क्या कहा और उस व्यक्ति के स्वभाव पर ध्यान दिया होता और वह उस समय के वचनों और हरेक बातों के साथ कितना सिद्ध था, तो वे जान जाते कि यह वही था। लगभग आधा दर्जन लोग ही इसे जान पाए, यह सही है। आधा दर्जन से अधिक लोग इसे एहसास ही नहीं कर पाए। वे उसे सुनने के लिए गए लेकिन उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। समझे, क्यों उन्होंने उनके समय में भविष्यवाणी के प्रमाणित होने का विश्वास नहीं किया। ध्यान दें, वे उस पर हंसे, उसे ऐसा ही कुछ तो कहा, चिल्लाने वाला, जंगली, अनपढ़, कट्टरपंथी, जो स्कूल नहीं गया, मारना नहीं है, ले जाना, लाना, बुलाकर लाना और इत्यादि अशिक्षित भाषा जैसे अक्सर होता है। उन्होंने उसकी शिक्षा के आधार पर उसका न्याय किया। उन्होंने उसे उसकी भाषा के व्याकरण से जांच लिया, जिस प्रकार से उसने कपड़े पहने थे, वह भेड़ की खाल लपेटे हुए था, ऊंट की खाल का पटुका पहने और उसके सारे शरीर पर बाल थे। पानी में चलकर बाहर आता है, कोई कलीसिया नहीं, कोई प्रचार मंच नहीं, कोई सहयोग नहीं। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे संसार के ईश्वर की आराधना कर रहे थे। समझे, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि अब वहाँ झूठे भविष्यवक्ता नहीं आए जैसे यम्ब्रेस और जर्नेस, लेकिन जिस प्रकार आप करना चाहते हैं कि वचन के द्वारा मूल संदेश को जांचें, तब आप इसे समझ जाएंगे कि यह कौन से युग में है और उस युग के लिए कौन सी भविष्यवाणी है। यूहन्ना की भविष्यवाणी परमेश्वर के अपने ही क्रम में प्रमाणित हुई थी। देखो कितनी सिद्ध, बाइबल ने कहा प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के पास आता है और यीशु वचन था और यूहन्ना वचन के आने की भविष्यवाणी कर रहा था उसके पूरा होने के लिए और यीशु वचन पानी में भविष्यवक्ता के पास आया। ओह कितना सुंदर, ये कितना अचूक है। देखा, उस दिनों में वचन एक असाधारण बात थी। यहाँ भविष्यवक्ता यह कहता हुआ आ रहा है, मैं वचन की आवाज हूँ। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए। कहा मैं उसके जूतों को खोलने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मध्य में एक खड़ा हुआ है, यहीं कहीं पर, वही वो एक है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूपा उसके हाथ में है और अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और भूसी को ना बुझने वाली आग में जलाएगा और दाने को खत्ते में ले जाएगा। ओह क्या ही भविष्यवक्ता है। यीशु ने कहा कि आज के दिन तक स्त्री से कोई इतना महान पुरुष नहीं जन्मा जैसा वो है। ओह कितना गरजने वाला, वो कैसे जानता था कि वो कहाँ पर खड़ा है। वह ठीक ठीक जानता था, उसने परमेश्वर से सुना और यह बिल्कुल ठीक वचन के साथ था, इसलिए उसने चिंता नहीं की कि लोगों ने क्या कहा। उसने इसे प्रचार किया और जो कुछ भी हो इसकी भविष्यवाणी की। और ध्यान दें, जब एक मनुष्य उसके लिए खड़ा होता है जो सत्य है, तब परमेश्वर इस बात के लिए बाध्य है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को सच्चा प्रमाणित करे। जब मूसा वहाँ मिस्र में आया और उसने कहा, मैं वहाँ उस ओर जंगल में था और एक झाड़ी को जलते देखा और वो भस्म नहीं हुई। मैं उस झाड़ी के पास गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक बड़ा अग्नि स्तंभ मंडरा रहा था और एक आवाज ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और उसने मुझसे कहा कि इस छड़ी को ले और यहाँ पर आकर और इन अद्भुत कार्यों को कर और परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेगा। अपनी छड़ी को बाहर निकाला और वहाँ पिस्सू और मक्खियाँ आ गए और अंधकार और इत्यादि बातें। और तब उस भविष्यवक्ता को प्रमाणित करने के लिए वह उन विश्वासियों को ठीक वहाँ पहाड़ की ओर वापस ले आया और परमेश्वर उसी अग्नि के स्तंभ में नीचे उतरा ठीक उसी पर्वत पर और साबित किया कि यह सही था। अब देखो कि वह इन दिनों में क्या कर रहा है, ठीक वही। अब वचन भविष्यवक्ता के पास आया और उसे सच्चा व्यक्ति प्रमाणित किया, वही व्यक्ति जो वचन ने कहा कि वहाँ होगा। अब जल्दी से, लेकिन फिर से यीशु भिन्न रूप में आया जो मनुष्य द्वारा दिए गए भविष्यवाणी के अनुवाद से भिन्न था। मनुष्य के पास अनुवाद था कि ये क्या होगा। निश्चय ही प्रेस्बिटेरियन सोचते हैं कि यह उनके लिए होना चाहिए। ध्यान दें, जब परमेश्वर कुछ भी करता है, ध्यान दें, हर दूसरा संगठन एक के साथ उठ खड़ा होता है। जी हाँ, हमेशा से ऐसा ही रहा है। उनके पास हर कहीं जम्ब्रेस और यर्नेस हैं। ध्यान दें, उन्होंने वचन का भाग कहा, लेकिन भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार हर एक अक्षर, हमेशा की तरह वे फिर से इससे चूक गए और उसे ज्योतिष विद्या बताने वाला कहा, एक शैतान बालजबूल, और कहा यह स्वयं को परमेश्वर बनाता है, जबकि उन्हें उनकी उसी बाइबल के अनुसार समझ जाना चाहिए था कि वो परमेश्वर था। ध्यान दें, उसकी भविष्यवाणी यशाया 9:6 के द्वारा हुई थी। कहा उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, सनातन का पिता कहकर बुलाया जाएगा। उसके बाद अब और कोई पिता ना होगा, क्योंकि आरंभ में वो पहला पिता था, केवल वही पिता है। उसने कहा, तुम इस धरती पर किसी मनुष्य को पिता न कहना, ना ही इसके बाद। वही वो पराक्रमी परमेश्वर है और सनातन का पिता, युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, निश्चय ही। अब उन्होंने उसके साथ वही किया जो सब भविष्यवक्ताओं ने बताया था कि वे ऐसा करेंगे, ठीक जैसा कि वे इस लौतिया युग में कर रहे हैं। उसे कलीसिया से बाहर कर दिया। अंधे हैं, नंगे हैं और यह नहीं जानते, ठीक जो भविष्यवक्ता ने कहा। बाइबल के भविष्यवक्ता ने मनुष्यों के रीति रिवाजों के द्वारा अंधे किए गए, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, वचन को अपनी कलीसियाओं से बाहर किया, हमेशा की तरह जैसी उनके लिए भविष्यवाणी की गई है। अब ध्यान दें, अब जल्दी से, अब इससे चूकना मत। यहाँ विषय है कैसे यीशु ने स्वयं को उन दो चेलों पर प्रकट किया कि वह उनका मसीहा है। अब सारी आंखें इस ओर थी और वहाँ उस देश में। अब यहाँ इससे चूकना मत, हमने आपको बताने की कोशिश की है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। उन मनुष्य के होठों और साधनों के जरिए से परमेश्वर स्वयं लिख सकता है, परमेश्वर स्वयं बोल सकता है, परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसने इसे करने के लिए मनुष्य को चुना, क्योंकि मनुष्य जिसने इसे लिखा वो परमेश्वर का भाग है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल को लिखा। यहाँ तक कि मनुष्य अपने खुद के विचारों में नहीं जानते थे कि वे क्या लिख रहे हैं। वे इससे असहमत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे लिखा, वे नहीं कर सके। बाइबल ने कहा, पुराने समय के मनुष्य जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले, परमेश्वर ने उनके हाथों को चलाया, दर्शनों में उनकी आंखें चलाई। वे और कुछ नहीं कह सकते थे सिवाय उसके जो वे देख रहे थे। वे कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उसका उस जबान पर, उंगलियों पर पूरा नियंत्रण था। हर एक देह का अंग परमेश्वर के पूरी तरह से अधीनता में था। कोई आश्चर्य नहीं, बाइबल ने कहा वे ईश्वर थे, वे परमेश्वर का भाग थे, वो परमेश्वर की परिपूर्णता था। ध्यान दें किस प्रकार यीशु उस वचन ने इन टूटे हृदय वाले दो चेलों पर प्रकट किया कि वो उनका मसीहा है। मसीहा, प्रतिज्ञा किया हुआ वचन। ध्यान दें, उसने क्या किया, उसने भविष्यवाणी की ओर संकेत किया। ध्यान दें, मूर्खों, भविष्यवक्ताओं के लेखों पर विश्वास करने में मंदमतियों, अब उसने कभी नहीं कहा, अच्छा क्या इस विषय में कलीसिया क्या कहती है। उन्होंने उसे कहानी सुनाई, सारी घटनाएं जो घटी थी वे जानते थे। वे बहुत उदास थे, उन्होंने उसे बताना आरंभ किया, या तू यहाँ अभी अभी परदेसी आया है, या तू नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या घटित हुआ? तो उसने कहा, कौन सी बातें? जैसे कि वो नहीं जानता। देखो, कभी कभी वो ऐसे काम करता है यह देखने के लिए कि आप इस विषय में क्या करेंगे। समझे? कहा, कौन सी बातें? यह कौन था? क्या घटित हुआ? क्या तू यहाँ अभी एक परदेसी आया है? और वे उसी मनुष्य से बात कर रहे थे जिसके साथ वे 3.5 वर्षों से रह रहे थे और उसे नहीं जान पाए। कौन सी बातें? क्या हुआ? तो ठीक है, उन्होंने कहा, नासरत का यीशु, जो कि एक भविष्यवक्ता था, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। वह सभी लोगों के सामने वचन और कार्य में सामर्थी था। हमने उसे उन चीजों को करते हुए देखा है कि वह इस युग के लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना गया था। हम ये जानते हैं और हमने विश्वास किया कि वह छुड़ाने वाला होगा, कि वह इसराइल को छुड़ाएगा। तब वह मुड़ता है और कहता है, तुम मूर्खों, तुम मंदबुद्धियों, कि इसे विश्वास करें जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में कहा, क्या वह पूरा नहीं होगा? देखा, भविष्यवाणी पर वापस जाकर उस पर अब ध्यान दें। विश्वासियों के लिए क्या ही फटकार है। दावा किया कि उन्होंने उस पर विश्वास किया। ध्यान दें कि वो किस तरह से विषय तक पहुंचा। उसने कभी भी सीधे सीधे आकर और यह नहीं कहा, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो था, लेकिन ध्यान दें, उसने स्वयं की वचन में पहचान दी। तब वे जान जाते हैं, यदि उसने ये कहा होता तो वह ऐसा कह सकता था, और यह ऐसा नहीं होता। लेकिन जब वो गया और सारे भविष्यवक्ताओं पर बोलना आरंभ किया जो उसके विषय में कहा था, और उन्होंने इसे देखा, तब वे अपने आप में ये बता सकते थे यदि वे परमेश्वर की संतान थे। लेकिन भविष्यवक्ताओं ने जो पहले से बताया उनके ध्यान को उस ओर ले गया और कहा कि उस समय की ओर देखने के लिए कहा जब मसीहा उसका युग प्रकट होगा। वो यूहन्ना की नाई, वो वचन बाइबल उनके संदेश की पहचान दे। कोई भी सच्चा भविष्यवक्ता यही करेगा। जी हाँ, बाहर सामने आकर और नहीं कहा, मैं वही हूँ, मैं हूँ। यह परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। देखा, लेकिन उसने कहा, वचनों में वापस जाओ। देखा, वह अपने कार्य करने के तरीके में कभी असफल नहीं होता है। समझे? उसने कहा, हम मूसा को जानते हैं। उसने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते। उसने कहा, मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। कहा, वचनों में ढूंढो, उसमें तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वो वचन जो मेरी गवाही देता है। जाकर वचन में ढूंढो और इसे देखो। यहाँ वो अपने कार्य करने के तरीके को कभी नहीं बदलता है, ना ही कभी बदला है। वो कभी नहीं बदल सकता है क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। समझे? ध्यान दें, वह सीधा इन दो चेलों के पास वापस गया, क्लियोपास और उसका मित्र इमाउस के रास्ते पर, और कहा, वचनों की ओर उनसे संकेत किया। कहा, तुम इतने मूर्ख क्यों हो कि विश्वास नहीं करते कि हर एक वचन जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, मसीह के विषय में लिखा, उसे पूरा होना ही है। ओह, क्या ही दिन है। यूहन्ना ने भी उसी चीज को किया। वचनों में ढूंढो, पीछे की ओर देखो। कहा, वहाँ जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हो रही है, मैं कहाँ से आया? समझे? यही है जिसे उन पर इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। सही है, आज इसे स्पष्ट होना चाहिए। वह बातें जो हम देखते हैं, जो पवित्र आत्मा कर रहा है, उसने एक बार कहा, वचनों में ढूंढो, और हम वह आज हमसे इसे करवाना चाहता है। ध्यान दें, बाइबल ने कहा, उसने मूसा की भविष्यवाणी से आरंभ किया। उसने मूसा से आरंभ किया और सारे भविष्यवक्ताओं को लिया, लेकिन उसने मूसा से आरंभ किया। एक भविष्यवक्ता मूसा ने कहा, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम लोगों के बीच में खड़ा करेगा। लोगों के बीच में प्रभु परमेश्वर भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करेगा। अब वो यह कह सकता था, क्लियोपास और तुम्हारा मित्र जो यहाँ है, क्या मूसा ने नहीं कहा कि इन दिनों में प्रभु परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करेगा? और यह मनुष्य जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, क्या उसने उस योग्यता से पूरा किया? अब मूसा ने यह भविष्यवाणी की, और अब तुम्हारे पास सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों से भविष्यवक्ता नहीं है, और यहाँ यह मनुष्य उठा, और इस मनुष्य का अग्रदूत कौन था? तुमने क्या कहा? इसे समझे? और सारे भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में कहा, उसके युग के विषय में उसने उन्हें बताया। निश्चय ही उससे सुनने के लिए उनकी बहुत ही रुचि रही होगी। क्या आप उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे? मैं उससे सुनना चाहूंगा कि उससे सुनूं जो उसने कहा, वही भविष्यवक्ताओं ने उसी के विषय में कहा, लेकिन उसने यह कभी नहीं कहा कि वह वही था। उसने उन्हें केवल भविष्यवाणी के द्वारा दिखाया। उसने केवल कहा कि भविष्यवक्ता ने कहा है कि यह घटित होगा। समझे? आइए बस कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा पीछे जाएं और अब आइए हम उन वचनों को सुनें जो उसने अपने खुद के लिए उल्लेख किए। यहाँ ध्यान देना, वचन स्वयं अपना खुद का उल्लेख कर रहा है। वचन स्वयं का खुद ही उल्लेख कर रहा है। उन्हें नहीं बताता है कि वह वही था, लेकिन वचन बस स्वयं के विषय में बोलता है। तब वे जान जाते हैं कि वह कौन था। वचन का अक्षर वचन का उल्लेख कर रहा है। वचन देह में अक्षर के वचन का उल्लेख कर रहा है। पूरी तरह से खुद के साथ पहचान को देता है। इधर देखिए, अब आइए हम उसे उल्लेख करते हुए सुने। कैसे? अब हम जानते हैं कि उन्हें हाल ही की घटनाओं के बारे में बता दिया गया था, जो कि उस क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना थी और पुनरुत्थान की कहानी, कब्र की बात, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। अब वो अपने आप के विषय में भविष्यवाणी के वचन में सीधा चला गया। अब आइए हम थोड़ा सोचें कि उसने ये कहा, उसने इससे कुछ और अधिक कहा। लेकिन ध्यान दें, आइए हम कहें उसे कहते हुए सुने, जकरया 11:12 को निकालें। और क्या भविष्यवक्ता के अनुसार मसीहा को बेचा नहीं जाना था चांदी के 30 सिक्कों के लिए? तुमने अभी कहा कि यह मनुष्य चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया था। उसमें जाएंगे, आप इन वचनों को लिख रहे हैं, जकरया 11:12। और तब उसने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया कि दाऊद ने भजन संहिता में क्या कहा? भजन संहिता 41:9, उसे अपने मित्रों के द्वारा धोखा दिया जाना था। और फिर से जकरया 13:7 में वह अपने चेलों के द्वारा छोड़ दिया गया था। और भजन संहिता 35:11 में झूठे गवाहों के द्वारा दोषी ठहराया गया। तुमने अभी कहा वो ठहराया गया था। यशाया 53:7, वह अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहा। यशाया 50:6, भविष्यवक्ता ने कहा उन्होंने उसको कोड़े मारे। भजन संहिता 22, उसे क्रूस पर चिल्लाना था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या उसने बीते परसों दोपहर को ऐसा ही किया? भजन संहिता 22 फिर से 18, उसके कपड़े उन्होंने आपस में बांट लिए। क्या उन्होंने ऐसा किया? और भजन संहिता 22:7-8, उसके बैरियों के द्वारा उसका ठड्डा उड़ाया गया, कलीसिया के द्वारा। फिर से भजन संहिता 22, उसके शरीर की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जानी थी, लेकिन उन्होंने मेरे हाथों और मेरे पैरों को छेद दिए। उसने कहा उसके हाथों को पीछे बांधे हुए था। उस समय पर कोई संदेह नहीं। यशाया 53:12 ने कहा कि वह अपराधियों के मध्य में मारा जाएगा। यशाया 53:9 ने कहा कि वह धनवान के संग गाड़ा गया। भजन संहिता 16:10 ने कहा, मैं उसके प्राणों को अधोलोक में न छोड़ूंगा और न ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। और क्या इस मनुष्य के आगे आगे चलने वाला मलाकी 3 नहीं था? ओह, मैं इसे इसका उल्लेख देते हुए सुनना चाहता हूँ। भविष्यवाणियों की ओर देखो, ध्यान दें, तब उन सारी प्रतिछायाओं में से होकर निकला होगा। इजाक के विषय में उत्पत्ति 22 में कैसे परमेश्वर ने इजाक को प्रतिछाया में दिखाया, कैसे पिता अब्राहम ने अपना पुत्र लिया, लकड़ी को लेकर पहाड़ पर गया और अपने ही पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए ऊपर ले गया। अब ये बातें उनके हृदय में जाना आरंभ हो रही थी। उसने उन्हें बताया था कि वे उस दिन की भविष्यवाणी को देखने में मंद बुद्धि थे, और अब ये बातें उनके हृदय में जाना आरंभ हो गई और इन सब बातों को पूरा होते देखने लगे। वे बातें जो अंतिम कुछ दिनों में जगह ली थी, अंतिम 2 या 3 वर्षों में उस युग की भविष्यवाणी प्रमाणित हुई। तब वे क्रूस पर चढ़ाए गए उनके मित्र यीशु को जान गए, जिसने इसके हर एक वचन को पूरा किया था। तब वे जान गए कि वो मनुष्य सच में वही मसीहा था जिसे मरे हुओं में से जी उठना था। कब्र उसे रोक नहीं सकी। मैं अपने पवित्र जन को सड़ने ना दूंगा। भविष्यवाणी का एक भी वचन कभी असफल नहीं हो सकता। और वह जी उठा। तो फिर भी संदेश वाहक जो आज सुबह वहाँ कब्र पर थे वे सही थे, वह मरे हुए में से जी उठा है, वो जीवित है, वो वही मसीहा है। क्यों? इसे चूकना मत। उसका व्यवहार, उसकी सेवकाई और हर चीज जो उसने की है वो प्रमाणित हो चुका है। बिल्कुल ठीक वे वचन जो भविष्यवक्ता ने कहे इस दिन के लिए जगह लेंगे, इसने इसे किया है। तब वे ये जान गए कि यह वही था, उनका क्रूस पर चढ़ाया गया मित्र यीशु जिसने यह किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके हृदय उनके भीतर जल उठे थे जब उसने उनसे बात की। और वे 6 मील चल चुके थे और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये थोड़ा ही समय हुआ है। और यहाँ इन्होंने एक और चीज की थी, आप जानते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी के प्रमाणित होने पर 6 घंटे का उपदेश सुना था। यही है जो उसने उनसे मार्ग में बात की। जैसे ही उन्होंने मार्ग पर चलना आरंभ किया उसने बाहर कदम रखा, क्योंकि वो ठीक वहीं यरूशलेम में था। 6 घंटों के पश्चात 60 फलांग वे ठीक इमाउस के लिए 6 मील की दूरी के रास्ते पर थे। यही तो है ये। और उसने प्रचार किया था, 6 घंटों में भविष्यवाणी की पुष्टि की थी, तब मेरे 3 घंटे पर मुझे दोषी न ठहराए। देखिए, समझे, लेकिन ध्यान दें, उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने भविष्यवाणी पर 6 घंटों के उपदेश की पुष्टि होते हुए प्रमाणित होते हुए सुना। अब ये सांझ का समय होता जा रहा था। आप जानते हैं कि वह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यह तब हुआ था कि उसने उनकी आंखें खोली यह जानने के लिए कि इब्रानियों 13:8 वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। सांझ के समय घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। इस आधुनिक घड़ी में क्या बात जगह ले रही है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है यदि आप केवल समय की भविष्यवाणी का विश्वास करें? हाँ, मूर्खों, समझने में मंदमतियों, विश्वास करने में मंद, आप इस पर विचार करते रहें। यह विश्वास करने के लिए कि सारे भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के विषय में जो कहा क्या उसे घटित नहीं होना है। अब उसने इन सारी बातों को पीछे से जांच लिया और दर्शाया कि भविष्यवक्ता ने जो कहा यह घटित होगा। तब उन्होंने समझना आरंभ किया, इसलिए उसने कहा वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे आगे जाना है। उन्होंने इस मनुष्य को पसंद किया, उन्होंने कहा तूने हमें कुछ तो दिया है, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, वह कहीं पर तो जीवित है। वे उससे बात कर रहे थे और इसे नहीं जानते थे, इसलिए वो, और कोई संदेह नहीं कि उसने उन्हें उदास होकर देखा और उसने आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु वो उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि वे उसे आमंत्रित करें। यही है जो वो आज रात प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे आमंत्रित करें। ध्यान दें, जब उन चेलों ने उसे मेज के चारों ओर उनकी संगति में आमंत्रित किया यह तब था कि उसने कुछ तो उस प्रकार किया जो उसने उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था, और उनकी आंखें खुल गई। वे उसके व्यवहार को और शैली को जानते थे, वे जान गए कि उसने क्या किया है, और उसने वैसे ही किया जैसे उसने पहले किया था, और उन्होंने कहा यह तो वही है, और जल्दी से वे इस बात को चिल्लाने के लिए उठ खड़े हुए और वो ओझल हो गया। और जहां उन्होंने इस उपदेश को सुनने के लिए 6 घंटे लिए थे, हो सकता है करीब 20 मिनट में ही फुर्ती से वापस जाकर वे बाकी के उन सभी को बताने लगे वो सचमुच जी उठा है, वो वास्तव में जीवित है। मित्रों, यह मलाकी 4, संत लूका 17, संत यूहन्ना 15 का पूरा होना है। ओह, बहुत से हैं, प्रकाशित वाक्य 10 और बहुत सारी भविष्यवाणियों का पूरा होना है जो कि ठीक इस दिन के लिए उन पर उंगली रखी जा सकती है, और मती और मरकुस की किताब में भी जहां उसने कहा कि यह बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म आकाश में प्रकट होंगे और लोग उनको तस्तरी कहते हैं, उड़न तस्तरी, जो शक्ति और विचार की गति से गायब हो सकती है, बुद्धिमता जो इसे चला सकती है, वो लिख सकता है, वो बोल सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो महान अग्नि का स्तंभ कल, आज और सर्वदा एक सा है। और पृथ्वी पर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, पिरामिड रूपी धुआं हवा में ऊपर उठ रहा है, बहुत ही ऊपर, जहां पर नमी नहीं हो सकती और ना ही कुछ हो सकता है, 30 मील ऊपर। इसके घटित होने से एक डेढ़ वर्ष पहले बता दिया गया था कि यह इस प्रकार से होगा। तब चित्र को घुमाकर और देखो कि यह कौन है जो नीचे देख रहा है। जो भी बताया गया उसमें एक वचन भी असफल नहीं हुआ और यहाँ परमेश्वर के लिखित वचन की पुष्टि कर रहा है, यह सत्य है। और अब यह फिर से सांझ का समय है। मैं सोचता हूँ यदि वह वापस लौटेगा अनुग्रह के द्वारा और अभी कुछ तो करता है जैसा उसने पहले किया था। आइए हम प्रार्थना करें और उससे मांगें। घटनाएं प्रमाणित भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उन बातों को समझ सकें जो बातें हमें जाननी चाहिए, आपके वचन को समझें। और अब प्रभु, अब हमने लगभग 2000 वर्षों में उपदेश सुना है, किताबों के लेखन, और इन अंतिम दिनों में यहाँ यह फिर से वापस आ गया है और अब यह सांझ के समय की ओर है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और उनमें से बहुतों ने उस युग में से होते हुए आपके साथ बातें की हैं और हो सकता है इस महान दिन के साथ साथ वहाँ ना तो रात या दिन रहा है जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा, लेकिन सांझ के समय में उजाला होगा। यीशु कब्र में से जी उठकर शमोन और स्त्रियों पर प्रकट हुआ और उन्हें दिखाया कि वह जीवित था। वो सुबह का समय था और फिर सांझ को वह फिर से वापस आया, लेकिन दिन में उनके साथ चला, उनके अंधेपन के लिए उन्हें फटकार लगाई, लेकिन फिर उसने सांझ के समय में स्वयं को उन पर प्रकट किया। परमेश्वर आज रात हमारी संगति में आए जो हमारे पास वचन के इर्द गिर्द है। परमेश्वर आज लोगों के बीच इस पर विश्वास करने वाले बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन मैं धन्यवादित हूँ कि आपने कुछ लोगों को बुलाया है और उन्हें अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया है और आपने कहा जितनों को पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएंगे। और अब जबकि सांझ के उजाले चमक रहे हैं, जबकि प्रभु आपने अनुमति दी है कि एक भी भविष्यवाणी सैकड़ों में से जो की गई कभी भी एक बार भी विफल नहीं हुई, तब सच में यदि यह पहचान देता है तो यह आप ही होंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना सिद्ध या अचूक नहीं हो सकता है। बिल्कुल बाइबल के समान कोई भी मनुष्य नहीं लिख सकता। कोई भी इस 1600 वर्षों की समय अवधि में 40 विभिन्न लेखकों के द्वारा नहीं लिख सकता था और इसमें एक भी गलती नहीं हो। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात आप स्वयं को इब्रानियों 13:8 का होते हुए प्रकट करेंगे कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, और वे कार्य जो आपने तब किए आप आज करें। और आपने प्रतिज्ञा की है, आपने कहा इन अंतिम दिनों में जबकि संसार सदोम और अमोरा की भ्रष्टता में बैठा हुआ है दूषित, हम इन लड़कों की ओर देखते हैं जो कि लड़कियों के समान कपड़े पहनते हैं और लड़कियों को लड़कों के समान व्यवहार करने की कोशिश करते देखते हैं, और इस दूषित युग में स्त्रियों और पुरुषों को देखते हैं, देखते हैं कामुकता का आकर्षण एक मूर्ति पूजा के समान बन गया है। सुसमाचार एक ओर धकेल दिया गया है और लौदिकिया कलीसिया में नग्नता है। हे परमेश्वर, क्या ही घड़ी है, आए प्रभु यीशु स्वयं को हम पर प्रकट करें, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं। अब जबकि आपने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, आपकी आंखें बंद है, मैं आपसे कुछ तो पूछने जा रहा हूँ। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो बातें आज की जा रही हैं, ये भविष्यवाणी का पूरा होना है? या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप विश्वास करते हैं जब वो यहाँ इस दिन के लिए शरीर में प्रकट हुआ और जो काम उसने वहाँ किए उन्हें यहाँ पर फिर से इस दिन में दोहराना था? भविष्यवक्ता ने ऐसा ही कहा, बाइबल ने ऐसा कहा है, सारा का सारा वचन अवश्य ही पूरा होना है, यह असफल नहीं हो सकता। उसने खुद की कैसे पहचान दी? उसी भविष्यवक्ता के रूप में जिसके विषय में मूसा ने बोला था, लोगों के हृदय के भेदों को जानता था। स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, वो मुड़ा और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। जब शमौन पतरस उसके पास आया तो वह उसका नाम जानता था, उसे बताया कि वो कौन था, उसका पिता कौन था, और वही सबसे प्रिय यीशु मरा नहीं है, वह हमेशा के लिए जीवित है। परमेश्वर की स्तुति हो। और अब इस सांझ के समय में मैं विश्वास करता हूँ उसने हमें फिर से एक साथ बुलाया है। ओ प्रभु यीशु, हमारे मध्य में आ जाएं, हमें छोड़कर आगे न जाना। आओ आज रात हमारे साथ रह, इस रात के पूरा होने तक, तब कल हम आपके साथ जाएंगे, ताकि हम आपको आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जान सकें, ताकि आपका प्रेम और अनुग्रह और दया हमारे साथ हो। हे अनंत परमेश्वर, इन बातों को प्रदान करें। हम जानते हैं केवल अकेला परमेश्वर ही इन्हें प्रदान कर सकता है। इस घड़ी के गंभीर भाव में आइए हम यह कहें, परमेश्वर हमारे पिता, हमारे निर्बल शरीर आपके लिए भवन है, लेकिन प्रभु आपका पवित्र करने वाला अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा अभी आ जाए, हमें प्रत्येक संदेह और प्रत्येक उलझन, प्रत्येक संशय और संदेहवाद की प्रत्येक पंक्ति से शुद्ध करें जो भी हमारे भीतर है, जिससे कि हम बिना किसी संदेह के स्वतंत्र हो सकें, बाहर आकर हिम्मत से पतरस के समान स्वीकार करें, तू मसीह है, कल आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सत्य है। आइए हम जरा देखें, इससे पहले कि हम यह प्रार्थना पंक्ति आरंभ करें, प्रभु स्वयं को हम पर प्रकट करें, जैसा कि आपने कहा, जैसा लूत के दिनों में था, जब अब्राहम, वो बाहर बुलाया गया झुंड, एक प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। लूत वहाँ नीचे आधुनिक बिल्ली ग्राहम और एक ओरल रॉबर्ट को सुन रहा था, उस सांप्रदायिक व्यवस्था के लिए वहाँ नीचे एक राष्ट्र के रूप में, लेकिन अब्राहम बिना किसी संगठन के परदेशी था। यह छोटा सा झुंड उस देश में से होते हुए इधर उधर भटक रहा था जिसका वो वारिस था, और नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक दिन पेड़ की छाया तले, जिस समय वे बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में वहाँ आ गया। दो दूत नीचे सदोम में चले गए और परमेश्वर ने मनुष्य की देह में यह साबित किया कि वो वही था। उसने कहा, अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कुछ दिनों पहले वो अब्राहम था, और SARRA सारा, ना ही सारा, राजकुमारी, और आपने उसे राजकुमारी के नाम के द्वारा पुकारा, एक राजा की बेटी। आपने अब्राहम को उसके नाम अब्राहम से पुकारा, राष्ट्रों का एक पिता, और आपने कहा, मैं तुझसे भेंट करने वाला हूँ। परमेश्वर किस तरह से भविष्यता का हृदय उछल पड़ा होगा, वह ठीक तब जान गया कि आप कौन थे। कोई आश्चर्य नहीं, उसने आपके पैर धोए और जितना भी भोजन पदार्थ उसके पास था वो निकाल लाया, और जो सबसे अच्छा है इसे आपके सामने रखा। वो जानता था कि वहाँ यह परमेश्वर था। तब उसने कहा, सारा कहाँ है? जैसे कि वह न जानता हो। और आप, अब्राहम ने उससे कहा कि वह तंबू में है, वह तंबू में है आपके पीछे। और आपने कहा कि क्या घटित होने जा रहा है, और उसने अपने हृदय में इस पर संदेह किया। और तब आपने अब्राहम से कहा, सारा ने इस पर संदेह क्यों किया? यह बातें नहीं हो सकती, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? हे परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन, आपने कहा, जैसा सदोम के दिनों में था, संसार उस स्थिति में होगा, ठीक अन्य जाति संसार के विनाश से पहले, अर्थात अन्य जाति का समय काल। यहाँ हम हैं, पूरी तरह सदोमियों जैसे। और तब आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र, जिसका हमेशा ही भविष्यता के समान उल्लेख किया गया, उस घड़ी में प्रकट होगा। हे परमेश्वर, अपने वचनों को पूरा करें। हम आपके विश्वासी बच्चे सच्चे हृदयों से प्रतीक्षा करते हैं कि हमें विश्वास दे प्रभु, कि जब हमारी प्रार्थना पंक्ति हो तो लोग विश्वास करें। यह सांझ का समय है पिता, परमेश्वर के पुत्र का सांझ का उजाला होने दो। वह जो था और जो है और जो आने वाला है, स्वयं को भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट करता है जो उसने की है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह विचित्र बात है कि कैसे जब हम यहाँ खड़े होते हैं, और यहाँ मैं खड़ा होता हूँ और लोगों को चुनौती देता हूँ, और राष्ट्रों में संचार प्रसारण से जुड़े होते हैं, कि परमेश्वर अब भी परमेश्वर है। वो विफल नहीं हो सकता और जो भी वो प्रतिज्ञा करता है वो उसे करेगा। वो उसे करने के लिए कभी भी विफल ना होगा क्योंकि उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं जो उसने कहा है उसमें पवित्र भरोसा रख सकता हूँ। इसलिए मैं उसके आगमन के लिए देखता हूँ। मैं किसी भी समय उसके प्रकट होने की बात जो रहा हूँ क्योंकि उसने कहा उस घड़ी में जिसमें तुम सोचते भी ना होंगे संसार नहीं सोचता होगा तब वो प्रकट होगा। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं यहाँ अपने आराधनालय में हूँ और यहाँ थोड़े से लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, भाई राइट्स, और थोड़े से लोग ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक यहीं पर हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ आप में से बहुत से हैं जिन्हें मैं नहीं जानता और मेरे पास ये कहने का कोई तरीका नहीं है कि परमेश्वर आज रात इसे करेगा। हमने उसे ये करते हुए वर्षों और वर्षों से देखा है लेकिन संभव है वो आज रात इसे ना करे। मैं नहीं जानता, यह उस पर निर्भर करता है। वह सर्वश्रेष्ठ है। वह जो चाहता है वो करता है। उसे कोई नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है। वह अकेला ही बना रहता है अपनी इच्छा और अपने मार्गों में। लेकिन क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की है मैं उससे इसे करने के लिए मांग रहा हूँ, ना ही हमारे लिए कि हमें इसकी आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है किसी अपरिचित के लिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सके। अब अभिषेक हम पर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे कितना अभिषेक करता है, उसे आपको भी अभिषेक करना है निश्चय ही विश्वास करने के लिए। अब मैं प्रार्थना पंक्ति को लेना चाहता हूँ और मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जितना अधिक मैं कर सकता हूँ। अब या तो हम पंक्ति को ले सकते हैं कि लोगों को बुलाएं और एक प्रार्थना पंक्ति यहाँ पर लाकर और यहाँ हर एक के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं। मैं समझता हूँ मेरे सेवक भाइयों को यहाँ हमारे साथ आने के लिए बुलाता हूँ और आप पर हाथ रखें। हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं या फिर हम अपने पिता से मांग सकते हैं। वही केवल एक है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि मेरे हाथ भी बस आप लोगों के जैसे ही हैं। लेकिन बात यह है यह मनुष्य के हाथ नहीं है जो ये करते हैं, यह तो परमेश्वर का वचन है। वचन में जो विश्वास है ये ऐसा करता है। इस विषय में कोई वैज्ञानिक चीज नहीं है, यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। मसीही के पास उसके हथियारों में से एक भी चीज नहीं है जो वैज्ञानिक हो। क्या आप इसे समझ गए? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, नम्रता, सज्जनता, धीरज, विश्वास, पवित्र आत्मा, विज्ञान के द्वारा सारी चीजें ना दिखने वाली हैं और केवल यही चीज है जो वास्तविक और स्थायी है। हर एक चीज जिसे आप देखते हैं धरती पर से आती है और वापस धरती में चली जाती है। लेकिन वे चीजें जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन इसे देखना अपने आप में घोषित करता है, यही अनंतता का संसार है। क्या आप विश्वास करेंगे यदि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करे और यह दिखाए कि वो यहाँ जीवित है उन्हीं कार्यों को करते हुए जो उसने आरंभ में किए इस संदेश के पश्चात? क्या आप इसे अपनी चंगाई के रूप में स्वीकार करेंगे? होने पाए परमेश्वर इसे प्रदान करे। अब मैं इस भवन में किसी से भी पूछ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है या आप कहाँ से हैं। मैं आपसे केवल इस संदेश को सत्य होने के लिए दृढ़ता पूर्वक विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ। यही वो संदेश है जो परमेश्वर के पास बाइबल में इस घड़ी के लिए है कि आज रात यीशु मसीह यहाँ पर है और जीवित है। अब लगभग आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं ठीक इसी शहर से हूँ जहाँ पर मैं पला बड़ा था। मेरे पास यहाँ तक व्याकरण स्कूल की शिक्षा भी नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। और आप मुझे काफी लंबे समय से जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सामने दिखाया है कि मैंने ईमानदार और सच्चा जीवन बिताया है। मैं एक ढोंगी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे आलोचक भी यह नहीं कहते। वे बस कहते हैं आप एक ढोंगी नहीं है, लेकिन आप बस पूरी तरह गलत हो। आप केवल अज्ञानता में गलत हो, ना ही जानबूझकर। मैं नहीं सोचता कि मैं अज्ञानता में गलत हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे संदेश की पुष्टि करता है और ये बात आपको बताना चाहिए कि यह कौन है। और आप स्पष्ट रूप से मुझे कहते हुए सुनते हैं कि यह मैं नहीं हूँ, इसलिए तब यह वही होना चाहिए। क्या यह सही बात है? तब परमेश्वर में विश्वास रखें, इस ओर देखें। और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। यदि वो ऐसा कर सकता है जैसा उसने पहले किया, तो फिर वह अब भी परमेश्वर है। आप इसका विश्वास करते हैं? आप इसका विश्वास करते हैं? एक महिला जो यहाँ मेरे सामने बैठी है, मेरी ओर देख रही है, आंसू उसकी आंखों में है। ईमानदारी से मैंने जानता कि वह कौन है, उसे मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। क्या आप सोचती हैं कि परमेश्वर आपके हृदय के भेद को जानता है, आपकी इच्छाओं को या आपके पापों को या जो कुछ भी है? आप सोचती हैं कि वह जानता है? आप सोचती हैं कि वह मुझ पर जो आपका पाप है उसे प्रकट कर सकता है, जो आपने किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपकी इच्छा को? यह जो भी है, यदि वो इसे करता है, तो क्या यह आपको उस पर विश्वास करने को, जानने को लगाएगा कि यह उसे ही होना है? क्या आप इसे उसी के समान स्वीकार करेंगी? यह आपका पाप नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, आपने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप उसके पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चाहती हैं। आप इसे पाएंगी। मैं इसे उस पर उतरते देख रहा हूँ, ताकि आप जान सकें कि मैं उस स्त्री की ओर देख रहा था, वो मेरी ओर देख रही थी। मैं आपको पवित्र आत्मा को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखो, इस छोटी सी महिला की ओर देखिए, जो यहाँ बैठी हुई है, नीचे, यहाँ मेरे पैरों के नीचे। जब मैंने यह कहा, यही वो चीज है जो वो चाहती थी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप विश्वास करती हैं कि आप इसे ग्रहण करेंगी बहन? तो फिर अपना हाथ उठाएं। मैंने इस महिला को कभी नहीं देखा, ज्ञात हो। देखिए, ये मनुष्य यहाँ नीचे अपने सिर को झुकाए हुए बैठा है, उसका कॉलर ठीक नहीं है और इत्यादि। आप मूत्राशय की परेशानी से पीड़ित हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो अपना हाथ उठाएं। तो ठीक है, परमेश्वर ने आपकी विनती को आपको प्रदान किया है। यह युवा पुरुष ठीक यहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को चाहता है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे आपको देगा? श्रीमान, आपकी सफेद धारी की टाई जो पीछे लटक रही है, परमेश्वर यह प्रदान करेगा। यह व्यक्ति यहाँ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी एक संस्थान में है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे चंगा करेगा, उसे स्वस्थ कर देगा? आप इसे विश्वास करते हैं तो आपके पास ये हो सकता है। आपका हाथ जो आपके गले पर है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हृदय की उस स्थिति को चंगा कर सकता है जो आपको परेशान कर रही है, पेट का रोग जो आपको है इस समय, आप वहाँ बैठे हुए ठीक अभी इससे पीड़ित हैं, क्या यह सही है? आप विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करता है? तो आपके पास ये हो सकता है। आमीन। आप देखें कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उन लोगों से पूछें, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। आमीन। उस उजाले को उस ओर दीवार के एक ओर देखें, ठीक वहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा है। वह पीठ की रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है। वो यहाँ से नहीं है, वो जॉर्जिया से है। श्रीमान डंकन, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर उस पीठ की तकलीफ को चंगा करेगा। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ एक व्यक्ति है जो यहाँ पीछे बैठा हुआ है, पीठ की तकलीफ के साथ मेरी ओर देख रहा है। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन यह श्रीमान थॉमसन है। आप विश्वास करते हैं? खड़े हो जाएं श्रीमान, वहाँ पीछे, जिससे कि मैं आपके लिए एक अपरिचित हूँ। यह सही है, लेकिन आप वहाँ बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी पीठ की परेशानी अब ठीक हो गई है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। यह लगभग सांझ के समय उजाला होगा। क्या आप नहीं देखते? वो आज रात यहाँ पर है। वो महान मैं हूँ है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या आप संतुष्ट और आश्वस्त हैं कि यह यीशु मसीह है जो स्वयं को ज्ञात करवा रहा है, भविष्यवाणी में स्वयं की पहचान दे रहा है? आँख के विषय में चिंता मत करो। परमेश्वर बीमारों और पीड़ितों को चंगा करता है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो बीमार हैं? आइए आपके हाथों को देखें। बस ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह बहुत खिंचाव और तनाव है। क्या आप लोगों में से किसी के पास प्रार्थना कार्ड है? मुझे नहीं पता कि मैं आपको यहाँ से कैसे निकाल पाऊंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। आप देखते हैं क्या? दीवार की ओर देखो, मैं उन्हें वहाँ कैसे लाऊंगा? यदि एक गलियारा जाम हो गया तो क्या होगा? आपने दूसरे वाले को ठीक वहाँ जाम कर दिया है। हर कोई अब भी रुका हुआ है। सुनना, मुझे सुने, क्या मैंने आपको कभी प्रभु के नाम पर ऐसा कुछ कहा है जो पूरा नहीं हुआ? क्या ये सही है? हर एक चीज हमेशा ही सही रही है। मैंने कभी भी आपसे अपने जीवन में एक भी पैसा नहीं मांगा। क्या मैंने मांगा? एक बार भी नहीं। मेरे जीवन में एक प्रेम भेंट नहीं ली। मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको भरमाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इस घड़ी के लिए परमेश्वर का वचन प्रकट करने के लिए हूँ। मैंने आपको सत्य बताया है और परमेश्वर ने गवाही दी है कि यह सत्य है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वचन यो कहता है कि यदि विश्वासी अपने हाथों को बीमारों पर रखता है, यीशु ने कहा वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तब यदि परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या आप विश्वास नहीं करते कि वह ठीक इसे अभी करेगा? अब अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें और बस एक मिनट तक वहां रुके रहें। अब प्रार्थना नहीं करें, केवल अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। वहां बाहर देश में, और मैं स्वयं अपने हाथों को इन रुमालों के ऊपर रख रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर एक मिनट के लिए देखें। क्या परमेश्वर ने अधूरा छोड़ा है? देखो वो कैसा है जो वचन हमने पढ़ा है। वे भविष्यवाणियां जो कि हमने आपको बताई है कि यीशु ने स्वयं की भविष्यवाणियों के द्वारा पहचान दी। अब समय की ओर देखें और इस अंतिम तीन सप्ताहों में जहां हमने समय को यथा स्थान पर रखा है जिसमें हम रह रहे हैं, उसे देखो जो हमने पढ़ा है। झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या है और लगभग वे चिन्ह जो चुने हुओं को भरमाएंगे, वचन किस प्रकार से प्रकट हुआ है, कैसे इस युग के ईश्वर ने अंधा कर दिया झूठ लोगों के हृदय को, और किस तरह से उस परमेश्वर ने स्वयं अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा कहा कि ये बातें इस लौतकिया के युग में घटित होंगी। कुछ भी अधूरा नहीं छूटा है। परमेश्वर यहाँ पर बस वही परमेश्वर है जिसने उन लोगों से इमाउस पर बातें की, जिसने स्वयं की भविष्यवाणियों के द्वारा पहचान दी जो उसके विषय में पहले से कही गई। वो आज रात यहाँ पर है, अपनी उपस्थिति को पहले से इस युग के लिए बताई गई भविष्यवाणियों के द्वारा पहचान दे रहा है। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास कर सकते हैं? तो फिर अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। अपने लिए प्रार्थना न करें, लेकिन अपने तरीके से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिस पर आपने अपना हाथ रखा है, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, संदेह ना करें। और अब यदि आप वो देख सकें जिसकी ओर मैं देख रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यदि आप देख सकें और आपका विश्वास उस महान पवित्र आत्मा को खींच सके जो उस ओर वातावरण में मंडरा रहा है, जिसकी तस्वीर विज्ञान ने ली है, और इसे इस भवन में से होते हुए देखें, और उस स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उस पर उतरे, लंगर के स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। केवल इसका विश्वास करें मेरे भाई। उसने इसे वचन और इत्यादि के द्वारा पहचान दी है कि यह सही है। अब जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है उसके लिए सच्चाई से प्रार्थना करें। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नासरत के प्रिय यीशु, क्योंकि हम सचेत हैं प्रभु वचन के द्वारा कि आप यहाँ पर हैं, इस प्रतिज्ञा के द्वारा कि आप यहाँ पर हैं, जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन एकत्र होंगे वहाँ मैं उनके मध्य में हूँ, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे, टेलीफोन की उन तरंगों पर बाहर होने पाए कि महान पवित्र आत्मा हर एक सभा के अंदर जाए, होने पाए वही पवित्र उजियाला जिसे हम ठीक यहाँ कलीसिया में देखते हैं, होने पाए यह हर एक जन पर और प्रत्येक पर उतरे, और होने पाए वे इस समय चंगे हो जाएं। हम शत्रु को फटकारते हैं, शैतान को मसीह की उपस्थिति में। हम शत्रु से कहते हैं कि वो हारा हुआ है, उस दूसरे के स्थान पर पीड़ा को सहने के द्वारा प्रभु यीशु की मृत्यु और तीसरे दिन के विजयी पुनरुत्थान में, और उसकी यहाँ प्रमाणित उपस्थिति की। वो आज रात हमारे मध्य में है, जीवित 1900 वर्षों के पश्चात जीवते परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक हृदय को विश्वास और सामर्थ्य से भर दे और चंगाई के सद्गुण जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हैं, जो अब इस महान उजाले के द्वारा कलीसिया के चक्कर लगाते हुए पहचान को देता है, उसकी उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में इसे परमेश्वर की महिमा के लिए प्रदान करें। होने पाए कि ये रुमाल जिन पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, होने पाए ये बीमारों और पीड़ितों के पास जाए जिस उद्देश्य के लिए वे हैं, होने पाए कि वही पवित्र आत्मा जो अब यहाँ पर है स्वयं की पहचान देते हुए हर एक रोगी के ऊपर स्वयं की पहचान को दे जिस पर यह रखा जाता है, होने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में विश्वास के साथ इतनी भर जाए इतना तक कि उनके शरीर का रोग चंगा हो जाए। यह हम परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह की उपस्थिति में मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम में, जैसा कि हम यीशु मसीह के सेवक से मांगते हैं, आमीन। अब आपके हृदय में मैं चिंता नहीं करता कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, क्या आप अपने हृदय से, अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके निवेदन को प्रदान कर चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक हाथ जो मैं देख सकता हूं ऊपर उठा। यदि आप विश्वास करते हैं, अब याद रखें कि यह समाप्त हो गया है। आप जो बाहर टेलीफोन प्रसारण पर हैं, यदि आपने अपने पूरे हृदय से विश्वास किया है, जैसा कि सेवक लोग आप पर हाथ रखे हुए हैं और आपके प्रियजन आप पर हाथ रखे हुए हैं, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि यह समाप्त हो गया है, तो यह समाप्त हो गया है। वो महान पवित्र आत्मा वो यहाँ आज रात आराधनालय में है। मैंने उसे लोगों के ऊपर मंडराते हुए देखा है, स्वयं को यहाँ किनारे की दीवार पर दर्शाया और एक मनुष्य पर नीचे उतरा और पूरे भवन से होते हुए यहाँ आया। हृदय के गुप्त विचारों को बता रहा है, उसकी उपस्थिति की पहचान देते यह दिखाने के लिए कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो हमारे मध्य में है, वो परमेश्वर है, कभी भी ना असफल होने वाला परमेश्वर। और क्या हमारे हृदय हमारे भीतर नहीं जल उठे और क्या अब नहीं जल रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अब पुनरुत्थित हो उठे यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, जिसकी महिमा और स्तुति सदा के लिए होती है, जो यहोवा सर्वशक्तिमान के प्रकट स्वरूप में है, जो आग के खंभे के रूप में जलती हुई झाड़ी में नीचे उतर आया कि भविष्यवक्ता के ध्यान को आकर्षित करे, जो पहाड़ पर नीचे उतर आया था और यहाँ तक जो कोई भी इसे छूता उसे मार डाला जाता था, सिवाय मूसा और यहोशू के। किस तरह से इसने इज़राइल के संतान को जंगल में से होते हुए उनकी यात्रा में मार्गदर्शन किया। आज बाहर बुलाए गए लोगों के प्रतिछाया के रूप में यहाँ है वो, वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा यहाँ तक कि विज्ञान के सामने स्वयं की पहचान दी और उसके उन्हीं कार्यों के द्वारा और उसी भविष्यवाणी के द्वारा वे बातें जो उसके लिए इस दिन में करने के लिए भविष्यवाणी की गई है, ताकि उसे कल, आज और युगानुयुग एक सा बनाए, जो सिद्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है। क्या यह हमारे हृदय को हमारे भीतर जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है? परमेश्वर आपको आशीष दे। अब एक सहमति के साथ आइए हम खड़े होकर कहें, अब मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करता हूं। और उसके अनुग्रह के द्वारा इस समय से आगे, हे परमेश्वर, कोई भी अविश्वास कभी मेरे हृदय में प्रवेश न करे, क्योंकि मैंने देख लिया है कि भविष्यवाणी आज के दिन की पूरी हुई है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और अब इस घड़ी के अपने वचन की पुष्टि कर रहा है। इस घड़ी की भविष्यवाणी जो उसके लिए लिखी गई अब हमारे मध्य में पूरी हुई है। वह मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा सब कुछ है। प्रिय परमेश्वर, हमारी गवाही को सुने और हमें दिन प्रतिदिन जीवन की रोटी देना, और हम आपको स्तुति देते हैं, हे परमेश्वर, अपने हृदय की गहराई से। वो एक जो सामर्थ्य है, हम आपकी स्तुति करते हैं, भविष्यवाणियों का परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओ ओह क्या ही क्षण है, क्या ही समय है। होने पाए हम इसे इस प्रकार से गा सकते हैं। क्या यह आपकी गवाही है? अब जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं वेल? अपने झुके हुए सिरों के साथ भाई वेल यहाँ पर प्रार्थना के साथ समाप्त करने के लिए खड़े हैं। भाई ली वेल वो आराधनालय के लिए लिखने का काम करते हैं, साहित्य और किताबों और इत्यादि चीजों को। बहुत ही बहुमूल्य भाई, वो बहुत से अभियानों में मेरे साथ रहे हैं। काश कि मेरे पास अवसर होता कि मैं हर एक सेवक को यहाँ ऊपर लाता और उनसे बातें करता। आप समझते हैं, मैं वास्तव में चाहता हूँ हर एक सेवक। आप लोगों को यहाँ पाकर हम खुश हैं। सारे जन साधारण, विभिन्न कलीसियाओं के लोग, वे जो भी हैं, हम आप लोगों को यहाँ पाकर खुश हैं। और वास्तव में हमारी यह एक दूसरे के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर आपके साथ हो जब तक हम फिर से नहीं मिलते। अपने झुके हुए सिरों के साथ और हमारे उठे हुए हाथों के साथ आइए हम इसे फिर से परमेश्वर के लिए बहुत ही मधुरता से गाएं।